हम लोग आज भगवान चेतन महाप्रभु के प्रकट होने के आंतरिक कारणों के दूसरे भाष्य को सुनेंगे। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमे कृष्ण स्वरूपम। भाई ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? अरे तो अभी सारा ओवरलोड निकालना है इसका, क्लासेस में जनरेटर नहीं चला सकते हैं। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, यहाँ पे बात रुकी थी कि श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर और उनकी अंग कांति को लेकर के उससे सुसज्जित होकर भगवान चेतन महाप्रभु आए। अब ये जो श्लोक आपके सामने है इसको मैं पहले बुलवा दे रहा हूं। हाँ, इस श्लोक को मैं पहले बुलवाऊंगा। ये सौवां श्लोक नहीं है इस पांच चौथे अध्याय का, लेकिन इसको आप समझ लेंगे तो आपको सारा डिस्कशन समझ में आ जाएगा। ये मूल श्लोक की व्याख्या करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बंगाली प्यारे पहले बोलेंगे और फिर श्लोक को बोलेंगे, तो पहले ही समझ लेंगे इसको तो फिर समझने में सुविधा रहेगी। कौन सा श्लोक? 1.5 जो आप लोगों के पारायण वाले फाइल में है। तो मेरे पीछे बोलिए, माइक में बोलिए, परायण फाइल को खोलिए। परायण फाइल जो है उसमें है, दिया हुआ है। रात रात एक मिनट। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद,
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद,
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
आप लोग तो भारतीय है गाड़ी वालों की तरह कुर्सी ब्लॉक कर रहे हैं। आगे आ जाइए। मुकेश रूप काल भाई ने आपका हाथ चबा लिया था ना, दूसरा हाथ चबाना ना मुझे, इतना दूर बैठे हो आप। सब वहीं दरवाजे के पास बैठते कि क्लास खत्म हो तुरंत भागने का मौका मिले, कहीं पकड़ न ले। कैसे बैक बेंचर की तरह बैठे हुए आप लोग। अरे भक्त लोग तो आगे बैठ सकते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा, तो श्लोक आपके सामने है, मेरे पीछे बोलिए, कई बार आवृत्ति करेंगे फिर उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। राधा कृष्णा, ओ क्षमा कीजिएगा, ये गलत श्लोक दिखा दिया मैंने, अगला वाला क्षमा कीजिएगा। श्री राधा यह प्रणय महिमा की दृशो वानयैवा,
राधा यह प्रणमय महिमा की दृशो वानयैवा,
स्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरिमा की दृशो वा मदीयः,
स्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरिमा की दृशो वा मदीयः,
सौख्यम चास्य मदनुभवतः की दृशं वेति लोभा,
सौख्यम चास्य मदनुभवतः की दृशं वेति लोभा,
तद्भावाढ्यः समजनी शचिगर्भ सिन्धौ हरिन्दुः,
तद्भावाढ्यः समजनी शचिगर्भ सिन्धौ हरिन्दुः।
श्री राधायाः प्रणय महिमा की दृशो वानयैवा,
श्री राधायाः प्रणय महिमा की दृशो वानयैवा,
स्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरिमा की दृशो वा मदीयः,
स्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरिमा की दृशो वा मदीया,
सौख्यम चास्य सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कीदृशं वेति लोभात्,
सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कीदृशं वेति लोभात्,
तद्भावाढ्यः समजनी शचिगर्भ सिन्धौ हरिन्दुः,
तद्भावाढ्यः समजनी शचिगर्भ सिन्धौ हरिन्दुः।
श्री राधाया प्रणय महिमा, एक मिनट, की दृशो वा नयेवा,
श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशो वा नयेवा,
स्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरिमा की दृशो वा मदीय,
स्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरिमा की दृशो वा मदीय,
सौख्यम चास्य मदनुभवतः की दृशम वेति लोभा,
सौख्यम चास्य मदनुभवतः की दृशम वेति लोभा,
तद्भावाड्यः समजनी शचि गर्भ सिंधौ हरिंदो,
तद्भावाड्यः समजनी शचि गर्भ सिंधौ हरिंदो।
आवृत्ति कीजिए।
श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशो वा नयैव,
धाया महिमा की दृशो वा नयैव,
स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा की दृशो वा मदीयः,
स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा की दृशो वा नयैव,
सौख्यं चास्य मद अनुभवत की दृशं वेति लोभात्, तद्भावाड्यः समजनि शचि गर्भ सिंधौ हरिंदो,
तद्भावाड्यः समजनि शचि गर्भ सिंधौ हरिंदो। देखिए पहले लाइन को देखिए, श्री राधायः प्रणय महिमा की दृशो, श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा कैसी है। भगवान कृष्ण जानना चाहते थे कि भगवान श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा कितनी है। एक पॉइंट नंबर वन, पहला कारण क्या है, श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है। वानयेव मतलब अथवा दूसरा कारण, स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा की दृशो वा मदीया, तो मेरी जो मधुरता है, मदीया मतलब मेरी जो मधुरता है, भगवान कृष्ण की जो मधुरता है, उसको उसका वो क्या, उसके स्वाद क्या है। स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा की दृशो वा मदीया, इस प्रेम के कारण जो मेरी मधुरमा है, भगवान कृष्ण सोच रहे हैं जो मेरी मधुरता है, माधुर्य है, वो उसका स्वाद कैसा है, जिसका आस्वादन श्रीमती राधा रानी करती हैं। दूसरा कारण क्या कारण है, दूसरा कारण है कि कृष्ण अपने माधुर्य के स्वाद का अनुभव करना चाहते थे, जो श्रीमती राधा रानी अपने प्रेम के कारण करती हैं। भगवान कृष्ण की मधुरता का अनुभव भक्त को प्रेम के कारण ही होता है। दूसरा कारण समझ में आ रहा है। अच्छा, सौख्यम चास्या मद अनुभवतः की दृशम वेति लोभात, और इस मधुरता का अनुभव करके किस प्रकार का सुख उनको अनुभव होता है, इस लोभ को जानने के लिए, वेति लोभात, इस लोभ इस सुख को जानने के लोभ के लिए, तद भावाट्य उनके भाव को स्वीकार करके, किनके भाव को, श्रीमती राधा रानी के भाव को, समजनी शची गर्भ, शची माता के गर्भ से भगवान गौरांग महाप्रभु अवतरित हुए, प्रकट हुए हैं, सिंधौ हरिंदु है वो हरि, लेकिन शची माता के गर्भ रूपी सिंधु से वह इंदु प्रकट हुआ, इंदु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा वस्तुतः समुद्र से नहीं प्रकट होता है, लेकिन प्रकट होता हुआ प्रतीत होता है, तो शची माता के गर्भ से चतन महाप्रभु प्रकट हुए, वह है स्वयं हरि। ये श्लोक समझ में आ गया, तीन कारण समझ में आए, श्रीमती राधा रानी का प्रेम की महिमा क्या है, भगवान कृष्ण की स्वयं की मधुरी माधुरी क्या है, जिसका स्वादन श्रीमती राधा रानी अपने प्रेम के कारण करती हैं, और उस स्वाद का अनुभव करने के कारण या मधुरता का अनुभव करने के कारण वो क्या सुख प्राप्त होता है। ये तीन मूल कारण आंतरिक थे, जिस कारण से भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। समझ में आ रहा है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 100वें श्लोक से। ये छठा श्लोक था मूल 14 श्लोकों में, ये आखिरी श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के वर्णन के संबंध में। तो अब इसका व्याख्या करने वाले हैं श्रील कृष्णदास कवराज गोस्वामी बंगाली प्यारों में। मुझे एक पुस्तक भी चाहिए, अगर हिंदी पुस्तक है किसी के पास, अगर है तो कुछ दे दीजिए। है हिंदी वाली है आपके पास, कि कहीं कहीं श्लोक ना कठिन है तो मुझे उसका अनुवाद ही पढ़ना होगा, और या इंग्लिश से पढ़ूंगा तो फिर उसमें टाइम लग जाएगा। आप माता जी से शेयर कर लीजिएगा, है ना, आज अनीश प्रभु नहीं आए तो उस कारण से। ठीक है, तो आसान है वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन कठिन चीजों को थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। षष्ठ श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, प्रथम कहिये से श्लोकेर आभास। श्री चैतन्य चरितामृत नामक के, चैतन्य चरितामृत नामक जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें फाइल शेयर कर दी गई है, उसमें आप देखिए सीसी आदि लीला चैप्टर 4 और श्लोकस करके है, अगर आप उसमें देखना चाहते हैं तो उसमें देख सकते हैं। जूम से देखना चाहते हैं तो जूम से देख सकते हैं। षष्ठ श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश प्रथम कहिए से श्लोकेर आभास। तो ये छठा श्लोक है जो आपने अभी सुना, श्री राधा या प्रणव महिमा इत्यादि, तो उसके अर्थ को प्रकाशित करने के लिए उसके श्लोक के आभास को एक इंडिकेशन दे रहे हैं उसको, ये कह रहे हैं। जैसा कि पहले चतन महाप्रभु के अवतरण होने के कारण को करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, कृष्ण भगवान किस प्रकार से बहिरंगा और अंतरंगा कारणों के कारण अवतरित होते हैं उसकी व्याख्या की गई थी। अवतरी प्रभु प्रचारिला संकीर्तन एतो बाह्य हेतु पूर्वे करियाची सूचन। अवतारी प्रभु, चतन महाप्रभु अवतारी हैं और उन्हें अवतरण करके संकीर्तन का प्रचार किया, यह तो बाह्य कारण है जैसा मैंने आपको पहले कहा था। अवतारे आर एक आछे मुख्य बीज रसिक शेखर कृष्णेर सेई कार्य निज। उनके अवतार का एक और मुख्य कारण भी है। मुख्य बीज समझते हैं, बीज जैसे हेतु समझते हैं ना, बीज जैसे पेड़ का कारण होता है, उसी तरह कह रहे हैं कि चतन महाप्रभु के अवतार अवतरित होने का एक और मुख्य बीज या मुख्य कारण था। रसिक शेखर कृष्णेर सेई कार्य निज, जो रसिक शेखर कृष्ण हैं उनके एक विशेष कार्य था। 103 वे कह रहे हैं इसका अर्थ, सेकंड लाइन का अर्थ है, यह प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता के रूप में उनके अपने कार्य कलापों से उत्पन्न होता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेम के जो लीलाएं हैं उनका रस आस्वादन करना चाहते हैं, उसका रस आस्वादन करने के कारण, इच्छा के कारण वह इस जगत में अवतरित हुए। अति गुड़ हेतु से त्रिविध प्रकार दामोदर स्वरूप हैते याहार प्रचार। इसका हेतु, उसका कारण बहुत ही गुड़ है और ये तीन प्रकार का है, आपने सुना ना, तीन प्रकार के कारण, और ये शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी के द्वारा प्रचारित हुआ है, उन्होंने समझाया है इसको। ये श्लोक लिखा गया है स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। अब ये कौन है? स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग ताहाते जाने न प्रभुर एस प्रसंग। स्वरूप दामोदर गोस्वामी चतन महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद हैं, इस कारण से वे इन सब प्रसंगों को भली भांति जानते हैं। सामान्य व्यक्ति बाहर का नहीं समझ पाएगा कि महाप्रभु क्यों किस कारण से अवतरित हुए। राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर से भावे सुख दुख उठे निरंतर। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो चतन महाप्रभु का चित्त है या मन है, वह श्रीमती राधा रानी के भाव की मूर्ति है। ये समझ रहे हैं, जैसे श्रीमती राधा रानी के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होते थे, उसी प्रकार से श्रीमन चेतन महाप्रभु के हृदय में भी भगवान कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होते थे, यद्यपि वह स्वयं श्री कृष्ण हैं। समझ रहे हैं इस बात? राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर, प्रभुर अंतर अर्थात महाप्रभु का हृदय, सेई भावे सुख दुख उठे निरंतर। जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में दुखी हो जाती थी, जब कृष्ण आते थे सुखी हो जाती थी, तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का भाव था, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु का भाव था। ये समझ रहे हैं ये बात? ओके, द ऑडियो इज क्लियर अमृत मनरात्र ब्रेकिंग? ओके, आई शुड नॉट ब्रेक, लेट मी जस्ट चेक द स्पीड। ये तो रोज का लफड़ा हो गया, व्हाई इट इज सो स्लो? ओके, होल्ड ऑन, नाउ इज ओके, वॉइस इज ओके, शुड बी, लेट मी जस्ट चेक, ऑडियो इज क्लियर, जस्ट वीडियो इज ब्लरी, सो मे बी यू कैन हेल्प, टेक हेल्प ऑफ योर फोन्स टू सी इट। नहीं आवाज कैसे आ रहा है? आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। शेष लीलाय प्रभुर कृष्ण विरह उन्माद भ्रममय चेष्टा और प्रलाप प्रलापमय वाद। शेष लीला में, शेष लीला अर्थ अंत लीला में, भगवान कृष्ण प्रभु मतलब चैतन महाप्रभु कृष्ण के विरह में कृष्ण विरह के उन्माद में रहते थे, पागलपन में रहते थे। अब इसका वर्णन आप अंत लीला में पढ़ सकते हैं। ब्रह्ममय चेष्टा और प्रलापमय वाद, ब्रह्ममय मतलब उनको समझ नहीं आता था वो क्या बोल रहे हैं, और उस प्रकार से चेष्टा कर रहे हैं और क्या चेष्टा कर रहे हैं, और प्रलापमय अनुवाद क्या बोल रहे हैं उन्हें कुछ पता नहीं चलता था। राधिकार भाव यै छे उद्धव दर्शने से भावे मत प्रभु रहे रात्रि दिने। जैसे उद्धव का दर्शन करके श्रीमती राधारानी का भाव उत्पन्न हुआ था, उसी भाव में चेतन महाप्रभु रात्रि दिन मत यानी पागल रहा करते थे। महाराज बता रहे थे कि बहुत से बाहर के लोग सोचते भी है कि चेतन महाप्रभु तो पागल हो गए कृष्ण प्रेम में, ये स्थिति है। रात्रि प्रलाप करे स्वरूपे र कंठ धरी आवश्य अपन भाव कहे उखाड़ी। रात में वह प्रलाप प्रलाप करते थे, प्रलाप मतलब कृष्ण के बारे में कुछ बोलते थे लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। अब आप आगे जाकर के अंत लीला में पढ़ेंगे तो महाप्रभु की बातें इस प्रकार से बताई गई हैं और समझ में बिल्कुल नहीं आता वो क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी को तात्पर्य भी नहीं दिया उसमें, कुछ समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, बड़ी कठिन सी बातें वो हैं। अब स्वाभाविक सी बात है वो कृष्ण प्रेम में ही बोल रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता, तो वह सब स्वरूपेर कंठधरी मतलब गले से कैसे गला पकड़ करके स्वरूप दामोदर गोस्वामी का वो सब बातें बोला करते थे। समझते हैं भैया, यहाँ पे भी आप देखते हैं लोग अपने मित्रों के गलवाही कहते हैं, गले में हाथ डाल कुछ बोलते हैं, तो वह अंतरंग पार्षद थे, पूरी रात स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के संग रहते और जैसा जैसा उनका भाव होता उसके अनुरूप वह कुछ कृष्ण कथा के गीत वो सुनाते उनको। आवेश आपाने अपन भाव कहे उगाड़ी, अपने हृदय की भावों को वह श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहा करते थे। जब जई भाव उठे प्रभु र अंतर से गीत श्लोके सुख दीन दामोदर। जे जे भाव जो जो भाव बंगला बोलने लगे जो जो भाव महाप्रभु के अंतर में उठता उसको अनुरूप श्री दामोदर गोस्वामी कोई श्लोक सुना करके या गीत गा करके उनको सुख दिया करते थे। अब गीत और श्लोक का अर्थ समझ लेना चाहिए कि ये सब कृष्ण कथा से ही होगा, कृष्ण करणामृत या चंडीदास जो महान भक्त हुए उनकी कविताओं को ऐसे गा करके या भागवत से अलग अलग स्थानों से इस प्रकार से कह के वह सुख देते थे। ए बेकार नाही किछु ए सब विचारे आगे इह विवरी ब करिया विस्तारे। तो ये कह रहे हैं कि इन सब लीलाओं का इन सब विश्लेषण अभी करना उचित नहीं है, इनका व्याख्यान में आगे करूंगा, अंत लीला में आप उसको देखेंगे। पूर्वे व्रजे कृष्णे त्रिविध वयो धर्म कौमार पौगंड और कैशोर अति मर्मा। पूर्व में व्रज में वृंदावन में किशोर ने भगवान कृष्ण ने तीन प्रकार के स्वरूप प्रकट करिए। त्रिविध वयो धर्म, वय का मतलब होता है उम्र, जहां तक मैं समझ रहा हूं। वय का अर्थ क्या होता है, वय मतलब वय धर्म आयु के लक्षण। तीन प्रकार के आयु के लक्षणों को ने प्रकट किया, कौन है, कौमार पौगंड और कैशोर। कौमार मतलब 5 साल से कम, पौगंड मतलब 5 साल से लेकर के 10 साल के बीच में, और कैशोर मतलब 10 साल के आगे, मतलब 14-15 साल की उम्र से कहना चाहिए। क्योंकि वात्सल्य आवेश कैला कौमार सफल पौगंड सफल कैला लैया सखावल। तो जो वात्सल्य भाव भगवान कृष्ण से संबंधित हैं उनको भगवान का बचपन वाला रूप तो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा लगेगा, कोई इसमें कठिनाई तो है नहीं। कुमार समझ रहे, छोटा बच्चे का जो रूप है वह जो वात्सल्य भाव से युक्त भक्त है उनको वो उस भाव को सफल कर दिया, उससे अच्छा प्यारा बच्चा नहीं मिलने वाला है। मेरी आदत पड़ गई कटाक्ष करने की, लेकिन लोग ऐसी बातें बोल ही देते हैं। अरे संतान उत्पन्न करके उसका चेहरा देख करके कितना असीमित सुख मिलता है, लेकिन असीमित सुख केवल अगर कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करेगा कोई तब प्राप्त होता है। असीमित सुख इस जगत के किसी भी संबंध से नहीं मिल सकता है। ऐसी बातें लोग बोल देते हैं कि मुझे इस पर कुछ बोलना पड़ता है। ये देख सकते हैं कि यहां के बच्चे जब इतने प्यारे लगते हैं तो कृष्ण कितने प्यारे लगेंगे, मतलब एक अंदाज लगा सकते हैं, कल्पना तो नहीं कर सकते। क्या वो गाते हैं दामोदर अष्टकम में, बाल रूप की ही छवि मेरे मन में बनी रहे, क्या है वो? एक श्लोक आते हैं ना, गोपाल बालम इति दृक्षो लीला ना, इदम ते वपुर नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरष्टम कि मन्ये। इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान का बचपन का स्वरूप था, उसने वात्सल्य भाव के भक्तों को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। पौगंड सफल कैला लैया सखावल, जो उनका पौगंड स्वरूप था, मतलब 5 साल के बाद वाला जो स्वरूप था, उससे उनके मित्रों को बहुत सुख प्राप्त हुआ। खूब खेले, खूब कुश्ती करी, बड़ा अच्छा उनको लगा। राधिका दी लैया कैला रासा देवी लास, वांछा भरी आस्वादीला रसेरा निर्यास। श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों को लेकर उन्हें रासादी विलास के कौन से स्वरूप में, कैशोर स्वरूप में, वांछा भरी आस्वादीला रसेरा निर्यास, जहां तक इसका अर्थ में समझ रहा हूं, और अपनी लीलाओं में अपनी इच्छा पूर्ति करते हुए रस के सार का आस्वादन किया। तो जितना उनकी इच्छा हुई उस प्रकार से उन्हें ये जो माधुर्य रस है उसका आस्वादन किया, कैशोर स्वरूप में, ये बोल रहे हैं। कैशोर वयसे काम जगत सकल रासादी लीलायति न करिल सफल। अपनी कैशोर अवस्था में भगवान कृष्ण ने अपनी तीनों अवस्थाओं एवं सारे ब्रह्मांड को रास नृत्य जैसी माधुर प्रेम की लीलाओं से सफल बनाया। तो अब बात आ रही है कि जो भगवान कैशोर स्वरूप है सर्वाकर्षक है, और ये भगवान की जो रासलीलाएं हैं, रासादि लीला है, वो सर्वश्रेष्ठ है, इतनी बात वो कह रहे हैं। अब इसको संस्कृत से कोट कर रहे हैं। सोपी कैशोर कह वयो मानयन मधुसूदन रेमे स्त्री रत्न कूटस्थ शपासु शपिता हित। भगवान मधुसूदन ने शरद कालीन रातों में रत्न सदृश गोपियों के मध्य लीलाओं में अपनी किशोर अवस्था का आनंद लिया। इस तरह उन्होंने जगत के समस्त दुर्भाग्य को दूर किया। कुछ बातें बहुत एडवांस्ड हैं तो उनको केवल मैं पढ़ूंगा, उसकी व्याख्या करने का अधिकार मेरा नहीं है। बस यहाँ बात ये हो रही है कि कैशोर अवस्था में भगवान ने अपने रास आदि लीला का आस्वादन किया, इतनी बात समझना। ओके, इसको गा सकते हैं, इसको हम पढ़ तो देंगे लेकिन केवल इसको गाएंगे। कैसे गाएंगे? 1.1.1 मेरे संग गाने का प्रयास कीजिए। वाचा सूचित शर्वरी रति कला प्रागल भया राधिकाम व्रीड़ा कुंचित लोचना विरचयन अग्रे सखी नामसौ तद्वक्षोरुह चेत्र केली मकरी पांडित्य पारं गतः कैशोरं सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरि। तो यहाँ पे भी श्लोक का अर्थ यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला में श्रीमती राधा रानी के संग विभिन्न प्रकार की लीलाएं करी और इससे उनके किशोर अवस्था सफल हुई। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हरिरेशा न चेद अवतारिष्यन् मथुराया मधुराक्षी राधिका च अभविष्यत् इयं वृथा विसृष्टिर् मकरांकस्तु विशेषतस्तदात्र। हे पौर्णमासी, यदि भगवान हरि श्रीमती राधा रानी सहित मथुरा में अवतरित न हुए होते तो यह सारी सृष्टि और विशेषतया कामदेव विफल हो गए होते। कहने का वत आप समझ रहे हैं तात्पर्य क्या है कि भगवान कृष्ण जी ने गोपियों के संग विहार किया, उससे उनकी कैशोर अवस्था, उससे जो कैशोर रूप है वो सफलता को प्रस्तुत कर रहा है, बस ये बात बोल रहे हैं। प्रभुपाद इसमें कोई तात्पर्य नहीं दिए तो मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहते हैं इन सारे श्लोकों से, ये समझिए। ए मत पूर्वे कृष्णा रसे रसदन यद्यपि करिला रस निर्यास चर्वण तथापि न हिलति न वांछित पूरण तहां आस्वादिते यदि करिले यतन। ए मत पूर्वे कृष्ण रसे रसदन, इस प्रकार से कृष्ण ने जो रस के आगर है, रस के धाम है, उसका आस्वादन किया। यद्यपि करिला रस निर्यास चर्वण, रस का निर्यास, रस के सार का चर्वण किया, मतलब खूब अच्छे से आस्वादन किया। तथापि नहिला तीन वांछित पूर्ण, फिर भी उनकी तीन इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। तीन इच्छाएं समझ रहे हैं जो मैंने पहले समझाया अभी। तहां आस्वादित यदि करिला यतन, और उसका आस्वादन करने के लिए वो प्रयास करने की इच्छा हुई उनकी, कोई करना चाहिए। ताहारा प्रथम वांछा करिए व्याख्यान, कृष्ण कहे आमि होय रसेरा निधान। तो अब मैं प्रथम इच्छा का व्याख्यान कर रहा हूं जो कृष्ण के हृदय में हुई, और कृष्ण कह रहे हैं आमि ए होय रसेरा निधान, मैं तो सारे रसों का धाम हूं, आश्रय हूं। पूर्णानंदमय आमि चिन्मय पूर्ण तत्व, राधिकार प्रेमे आमा करायुन मत। पूर्णानंदमय, मैं पूर्णानंद हूं, मैं हूं मतलब मुझे कोई अभाव नहीं है। चिन्मय पूर्ण तत्व, मैं चिन्मय हूं, पूर्ण तत्व हूं, मुझे कोई अभाव नहीं है। फिर भी राधिकार प्रेम आमा करायुन मत, फिर भी श्रीमती राधारानी का प्रेम मुझको पागल कर दे रहा है। दुनिया में कोई वस्तु, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पाने के लिए पागल होगा तभी ना, जब उसके पास वो वस्तु नहीं होगी, समझ रहे ना। लेकिन भगवान आश्चर्यचकित है, कह रहे हैं कि मैं पूर्ण आनंद हूं, आत्मराम हूं, किसी भी वस्तु की मुझे बाह्य रूप से आवश्यकता नहीं है, फिर भी श्रीमती राधा रानी का प्रेम कितना अद्भुत है कि मुझको पागल कर रहा है। ये प्रेम क्या है? श्री राधाया प्रणव महिमा की दृश्यो, श्रीमती राधा रानी का प्रेम कैसा है वो जानना चाहते थे। ये पहली इच्छा है, उसी को यहां व्याख्या हो रही है। ना जानी राधार प्रेमे अच्छे को तो बोल, ये बले अमारे करे सर्वदा विबल। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम में ऐसा क्या बल है। तो ये बल क्या कर रहा है? कह रहा है ये बले अमारे करे सर्वदा विबल, ये बल मुझे, ये श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे सदा विबल करता है। विबल मतलब हिंदी समझने वालों को तो कोई कठिन नहीं है, इंग्लिश में क्या लिखा है विबल का अर्थ, वेहवल समझ, प्रभा तो वेहवल ही रखे हैं। वेहवल का अर्थ क्या होता है? वेहवल का अर्थ हिंदी भाषी वाले तो समझते हैं, व्याकुल कह सकते हैं, इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, पता नहीं क्या इसका अर्थ। ईगर, ईगर इज नॉट दैट, ठीक है। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा माना नृत्य नाचाई उद्भट। श्रीमती राधा रानी का प्रेम गुरु है और मैं एक नट की भांति उनका शिष्य हूं। नट समझते हैं, नाचने वाला। सदा आमा नाना नृत्य रचाए नचाई उद्भट, मुझे विभिन्न प्रकार का उद्भट उत्कट नृत्य कराता है। कौन कराता है? श्रीमती राधा रानी का प्रेम। ये बात कस्माद वृंदे प्रिय सखी हरे पाद मूलात कुतो सौ, कुंडारण्ये किमहक किमहक कुंडारण्ये किम इह कुरते नृत्य शिक्षाम गुरुः कः, तं त्वन् मूर्तिः प्रतितरुलतं दिग्विदिक्षु स्फुरन्ति, शैलूषीव भ्रमति परितो नृत्ययन्ति स्वपश्चात्। ओ सॉरी, इसका अर्थ बताना भूल गया। ये हाँ, अब ये जो इसका अनुवाद है, ये अनुवाद एक संवाद के रूप में है। ये गोविंद लीलामृत से श्लोक लिया गया। कह रहे हैं हे प्यारी सखी वृंदा, तुम कहां से आ रही हो? कस्मात प्रिय वृंदे प्रिय सखी, हे प्रिय सखी वृंदे कहां से आ रही हूं? मैं श्री हरि के चरणों से आ रही हूं। हरे पाद मूलात कुतौ वसौ, वो कहां है? वे राधा कुंड के तट पर स्थित वन प्रदेश में है। कुंडारण्य, कुंडा मतलब राधा कुंड के अरण्य, कुंडारण्य किम इह कुरुते, वे वहां क्या कर रहे हैं? अब देख रहे हैं, संस्कृत देखते जाइए। कुतौ कस्मात वृंदे प्रिय सखी, हे वृंदे कहां से आ रही हो? हे सखी प्रिय सखी कहां से आ रही हो? हरे पाद मूलात, भगवान हरि के चरण कमलों से आ रही हो। कुतौ असौ, वो कहां पे हैं? कुंडारण्ये, राधा कुंड के जंगल में हैं। किम इह कुरुते, वो क्या कर रहे हैं? कौन क्या कर रहा है? भगवान हरि के चरण कमल क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं नृत्य शिक्षाम गुरु, नृत्य शिक्षाम, तो कह रहे हैं कि वे नृत्य की शिक्षा ले रहा है। कौन ले रहा है नृत्य की शिक्षा? कृष्ण के चरण कमल। कहने का मतलब कृष्ण, आप देख रहे हैं ना, ता थाई 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 करके स्टेप्स लेते हैं ना पांव के, तो कृष्ण के चरण कमल नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं। काव्य कितना सुंदर है। गुरु कहा, कौन गुरु है उनका? तम त्वन मूर्ति प्रतितरुलतम दिग्विदृक्ष स्फुरंती। राधा तुम्हारी मूर्ति उन्हें पीछे पीछे नचा रही है और स्वयं एक चतुर नर्तकी की तरह हर वृक्ष तथा हर लता में सभी दिशाओं में अपने आप को प्रकट कर रही। तो जहां जहां कृष्ण देख रहे हैं लताओं में इत्यादि में, वहां श्रीमती राधा रानी ही दिख रही, उनको उसके कारण से है नृत्य करना सीख रहे हैं। तो आप ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? पिछले श्लोक को प्रमाणित करने के लिए कि राधा रानी का प्रेम उनका गुरु है और कृष्ण उनके शिष्य बन जाते हैं। किसके शिष्य बन जाते हैं? श्रीमती राधा रानी के प्रेम के। समझ नहीं आ रहा उनको कि यह प्रेम है क्या वस्तु। ठीक है,
निज प्रेमास्वादे मोर हय ये आह्लाद, तहां हयते कोटि गुण राधा प्रेमास्वाद।
तो कह रहे हैं श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम के आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता है, वो जो प्रेम मुझसे करती है, सो जो भी मुझे आनंद मिलता है उससे तहां हयते कोटि गुणा, उससे कोटि गुणा अधिक श्रीमती राधा रानी को प्रेम का आस्वादन होता है। तो अब वो जानते हैं तो बहुत कम मिल रहा है मुझे। कोई वस्तु आपको एक मिल रही हो, सामने वाले को करोड़ों गुना मिल रही हो, तो आपको आश्चर्य होगा ना उसे करोड़ों गुना क्यों प्राप्त हुएगी। ये बात बोल रहे हैं।
आमी यै छे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, राधा प्रेम तै छे सदा विरुद्ध धर्ममय।
जैसे मैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जैसे मैं परस्पर विरुद्ध धर्म का आश्रय हूं। जैसे भगवान सबके प्रति सम है लेकिन अपने भक्तों से प्रेम करते, तो ये बात अलग हो गई ना। आप एक तरफ कह रहे हो कृष्ण सबको सबके प्रति सम है, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? नहीं, अपने भक्तों से प्रेम करते। तो ये बात तो कुछ अजीब सी हुई। वो किसी से द्वेष नहीं करते लेकिन अपने भक्तों के द्वेषियों से द्वेष करते। तो दोनों ही बातें भगवान में विरुद्ध है ना, लेकिन दोनों विरुद्ध धर्मों का भगवान आश्रय है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं राधा प्रेम तैचे सदा विरुद्ध धर्ममय। श्रीमती राधा रानी का प्रेम भी ऐसे ही विरुद्ध धर्मों का आश्रय है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम भगवान कृष्ण को समझ नहीं आ रहा है, तो क्यों समझ नहीं आ रहा है इसकी व्याख्या हो रही है।
राधा प्रेमा विभुजार बढ़ते नाई ठाई, तथापि से क्षण क्षण बढ़ाए सदाई।
श्रीमती राधा रानी का प्रेम विभु है, महान है, जिसमें बढ़ने की और कोई संभावना नहीं है, फिर भी वह क्षण क्षण बढ़ता है। ये कितने आश्चर्य की बात। कोई वस्तु एकदम अनंत है, उसके बढ़ने की और कोई वस्तु मतलब कोई क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी संभावना नहीं है, अब फिर भी हर क्षण बढ़ रही है, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। तो ये भगवान कृष्ण समझ रहे। इसीलिए श्रीमती राधा रानी के तत्व के बारे में ठीक से समझना चाहिए। ऐसे किसी को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, वो तो राधा है, या मैं राधा हूं, या मैं राधा बन जाऊंगी, या बन जाऊंगी तो फिर भी दोनों ही गलत है। बन जाऊंगी और बन जाऊंगा दोनों ही गलत है। राधा रानी कोई बन नहीं सकता है। श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति।
जहां वही गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित, तथापि गुरुर धर्म गौरव वर्जित।
ये कह रहे हैं यहाँ पे कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम से बढ़कर कोई भी नहीं है। जहां वही गुरु वस्तु ना ही सुनिश्चित, निश्चित बात है कि उनसे अधिक प्रेम कोई नहीं कर सकता है। तथापि गुरुर धर्म गौरव वर्जित, इतना श्रेष्ठ होने के बाद भी उनमें कोई भी अहंकार नहीं है, गौरव वर्जित। कोई व्यक्ति महान होता तो स्वाभाविक से बात सोचेगा मैं अन्यों से श्रेष्ठ हूं, लेकिन श्रीमती राधा रानी ऐसा नहीं सोचती। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति भगवान के सामने आता है और श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करता है कि हे श्रीमती राधा रानी हमें कृष्ण की सेवा में नियोजित कीजिए, तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कृष्ण ये तो कितना अच्छा डिवोटी है, ये तो मुझसे भी अच्छा डिवोटी है, आप इसकी सेवा जरूर स्वीकार कीजिए। और वाकई ऐसा सोचती हैं वो, कितना अच्छा डिवोटी है, तो मुझसे भी अच्छा डिवोटी। ये एक शुद्ध भक्त का स्वरूप है। स्वरूप मतलब उसको जितना वो आगे बढ़ेगा उसे अन्य लोग भजन में लगे हुए दिखेंगे, वो खुद भजन में लगा हुआ नहीं दिखेगा। उसे लगेगा मुझे कोई प्रेम नहीं है, अन्य भक्तों को प्रेम है। और जो भक्त प्रगतिशील नहीं होते या प्रगति नहीं किए रहते, वो लगता है मुझसे बड़ा प्रेमी कौन है। ये सब नहीं सोचना चाहिए। वास्तविक जिसके हृदय में प्रेम होता है उसको लगता है मुझे प्रेम की गंध भी प्राप्त नहीं।
यहाँ होते सुनिर्मल द्वितीय नाही आर, तथापि सर्वदा वाम्य वक्र व्यवहार।
उनके समान जिनका प्रेम है उतना सुनिर्मल प्रेम और द्वितीय कोई वस्तु है नहीं, फिर भी हमेशा उसका वाम्य वक्र व्यवहार रहता है। वाम्य स्वभाव क्या होता है? प्रतिकूल, वो गुस्सा करती हैं। कृष्ण अंदर से तो कृष्ण से प्रेम करती हैं लेकिन बाह्य से मान करती हैं, इस प्रकार से वो करती हैं। और वक्र मतलब टेढ़ा, टेढ़ी चाल से कहना चाहिए। इसे प्रभुपाद जी कोई तात्पर्य नहीं दिए हैं तो थोड़ा थोड़ा ही हम कुछ कह सकते हैं इस संबंध में। एक श्लोक कह रहे हैं, श्लोक कैसे बोला जाएगा, विभुरपि कलयन सदा विवृद्धिम गुरुरपि गौरव चर्यया विहीनः मुहुरुपचित वक्रिमापि शुद्धो जयति मुरद्विषी राधिकानु राधिकानुरागः। ये दान के लिए कौमुदी से लिया गया। आप समझ सकते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितने ग्रंथ पढ़े होंगे और क्या क्या जानते होंगे, और एक एक श्लोक को ऐसे सिंपल सरल बंगाली में बोल रहे हैं लेकिन उसको प्रमाण देने के लिए संस्कृत में इसका अनुवाद पढ़ देता हूं। मुर असुर के शत्रु कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की जय हो। यद्यपि वह सर्वव्यापी है किंतु वह प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। यद्यपि वह महत्वपूर्ण है किंतु वह गर्व से विहीन है। यद्यपि वह शुद्ध है किंतु सदैव कपट से भरा रहता है। तो इसका अर्थ आप समझ रहे हैं, सब बातें क्यों बोली जा रही हैं। भगवान कृष्ण नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान श्रीमती राधा रानी का प्रेम किस प्रकार का, इसलिए सारे श्लोक कहे जा रहे हैं। से प्रेमार श्री राधिका परम आश्रय, से प्रेमार आमी हई केवल विषय। उस प्रेम की आश्रय कौन है? श्रीमती राधा रानी, उनके हृदय में प्रेम है और उस प्रेम के विषय कौन है? भगवान कृष्ण। ये बोल रहे, विषय जातीय सुख आमार आस्वाद, आमा है ते कोटि गुण आश्रय आह्लाद। विषय जातीय सुख, भगवान कृष्ण प्रेम के विषय कृष्ण है, तो कृष्ण विषय है, तो विषय के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में जो उनको सुख मिलेगा वो मिलता है, लेकिन जो उनसे प्रेम करने वाले प्रेमी भक्त श्रीमती राधा रानी को सुख मिलता है वो कोटि गुना अधिक होता है। अगर भगवान कृष्ण की सेवा श्रीमती राधा रानी कर रहे, अगर मतलब करती ही रहती हैं तो कर रही हैं, तो कृष्ण को मिलेगा मान लो सुख नंबर एक पॉइंट, तो श्रीमती राधा रानी को मिल रहा है करोड़ों गुना। तो उस करोड़ों गुना सुख का आस्वादन करने की इच्छा भगवान कृष्ण को हो रही है। कोई इसमें कठिन तो नहीं होना, समझ में आ रहा होगा अपनों को। आश्रय जातीय सुख पाइते मन धाय, यत्न आस्वादिते नारी की करी उपाय। जो आश्रय जातीय सुख है, जो एक भक्त को सुख मिलता है, श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उसको सुख पाइते मन धाय, मन उनका दौड़ रहा है उस सुख को प्राप्त करने के लिए। यत्न आस्वादिते नारी की करे उपाय, लेकिन यत्न करने पे भी वह इसका आस्वादन नहीं कर पा रहे क्योंकि तो भगवान है, वो तो सेव्य है, लेकिन सेवक को जो सुख प्राप्त हो रहा है वह तो तभी को मिलेगा जब वो सेवा का भाव स्वीकार करेंगे। ही इज सर्व्ड, ही इज मास्टर, सो ही गेट्स द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग अ मास्टर, बट द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग सर्वेंट ही कैन ओनली गेट व्हेन ही इज सर्वेंट। देखिए इस जगत में भी हम देखते हैं कि दूसरों को प्रसाद दे करके बहुत सुख मिलता है, पता नहीं मसला मिलता है, तो जो खाने वाला है उसको जो सुख मिल रहा है उससे अधिक सुख मिलता है उसकी सेवा करने वाले को, ये होता है। समझ रहे होंगे इस बात को आप, तो यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तो सेव्य का सुख प्राप्त कर रहा हूं, स्वामी का सुख प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन मेरे सेविका श्रीमती राधा रानी को कितना सुख मिल रहा है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, उसके लिए उनको भाव स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप समझ आ रहे हैं कि राधा भाव क्यों स्वीकार करा उन्होंने। ओके, कभू यदि ए प्रेमार हये आश्रय, तबे ए प्रेमानंदेर अनुभव होए। कभी यदि इस प्रेम का आश्रय में होऊंगा तब मैं इस प्रेमानंद का अनुभव कर पाऊंगा। ग्रहण कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी का प्रेम क्या है, वो कितना सुखी है, उसका सुख का अनुभव करने की इच्छा हुई, तो कह रहे कि इस प्रेमानंद को, इस प्रेम का आश्रय मैं बनूं, मैं भक्त बनूं, तो मैं इस प्रेम का सुख का अनुभव कर पाऊंगा। एते चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी, हृदय बाढ़े प्रेम लोभ धक धकी। लैंग्वेज बड़ी सुंदर है। इस प्रकार से सोचते रहे कृष्ण, एते चिंती करे कृष्ण परम कौतुकी, बड़े उत्सुक हो गए, हृदय बढ़ाए प्रेम लोभ धक धकी। तो कह रहे हैं कि उस प्रेम का आस्वादन करने की उत्कट इच्छा उनके हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगी। धक धक कहते ना धधकती हुई अग्नि, तो उसी प्रकार से कह रहे हैं उनके उस प्रेम को आस्वादन करने का लोभ हुआ, जैसे कि मैंने आप लोगों को श्लोक में दिखाया था कि दृशम वेति लोभात, वो लोभ उनके हृदय में जागृत हो गया कि इस प्रेम का आस्वादन मुझको करना है, ये बात बोल रहे हैं। एक सुन आर लोभेरा प्रकार स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे ना विचार। तो ये एक प्रकार एक कारण था वो लोभ जागृत होने का कि वह प्रेम का आनंद क्या है। अब दूसरा है सुनिए, स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे ना विचार, अपने माधुर्य को देख कर कृष्ण विचार करने लगे। आप मेरा फोन ले सकते हैं इनके, ठीक है। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा त्रिजगते इहार के नाही पाय सीमा। मेरी मधुरिमा, कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण। मेरी मधुरिमा अद्भुत है, अनंत है और पूर्ण है, तीनों जगत में इसकी कोई सीमा नहीं प्राप्त कर सकता। कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। एई प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली आमार माधुर्यामृत आस्वादे सकली। और अपने प्रेम के द्वारा श्रीमती राधा रानी अकेले ही मेरे माधुर्यामृत मेरी मधुरता का आस्वादन सारा आस्वादन करती हैं, ये बोल रहे हैं। यद्यपि निर्मल राधार सत प्रेम दर्पण तथापि स्वच्छता तार बाड़े क्षणे क्षण। ये बहुत अच्छा बात है, जरा सुनिए, क्षणे क्षण, ये सुंदर बात है, इसको सुनिए। यद्यपि राधा का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है किंतु इसकी स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। अब जरा इसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। आमार माधुर्य नाही बाढ़ीते अवकाशे ए दर्पण आगे नव नव रूपे भासे। मेरे माधुर्य के आगे बढ़ने का अवकाश कोई स्थान नहीं है, पहले ही वो अनंत है। ए दर्पणेर आगे, इस दर्पण के आगे, किस दर्पण के आगे? श्रीमती राधा रानी के प्रेम रूपी दर्पण के आगे। इसमें नए नए रूप भासित होते हैं, नए भगवान कृष्ण और सुंदर दिखते हैं, और श्रीमती राधा रानी उनको देखती हैं, खुश होती हैं, उनको देखकर फिर कृष्ण और सुंदर हो जाते हैं, फिर वो श्रीमती राधा रानी देखती हैं वो और खुश हो जाती हैं, फिर तो और खुश हो जाती है। ये अद्भुत बात है, समझ रहे ना इस बात को। मन माधुर्य राधा प्रेम दोहे होड़ करी छणे छणे बाड़े दोहे के हे नाही हारी। मेरा माधुर्य और श्रीमती राधा रानी का प्रेम दोनों होड़ करी, होड़ समझते हैं कंपटीशन कर रहे हैं। कृष्ण सुंदर दिख रहे हैं, राधा रानी का प्रेम बढ़ा तो है ही, पहले से और बढ़ जाता है। अब उसके प्रेम को देखकर कृष्ण का माधुर्य और बढ़ जाता है, फिर राधा रानी का प्रेम और बढ़ जाता है, तो ये कंपटीशन चल रहा है। क्षणे क्षणे बाड़े दो है, दोनों ही क्षण क्षण में बढ़ रहे हैं, केह नहीं हारी, दोनों हार नहीं मान रहे हैं। और आपने दोनों के संबंध में क्या सुना? श्रीमती का राधा रानी का प्रेम कितना है? असीमित है, बढ़ने का कोई अवकाश नहीं है, फिर भी बढ़ रहा है, क्षण क्षण बढ़ रहा है। भगवान कृष्ण की मधुरता कितनी है? असीमित है, बढ़ने का कोई अवकाश नहीं है, फिर भी क्षण क्षण बढ़ रहा है। तो ये परस्पर विरोधास्पद गुण है प्रेम के और भगवान के माधुर्य के। आमार माधुर्य नित्य नव नव होय स्वस्व प्रेम अनुरूप भक्ति आस्वादय। आमार माधुर्य, मेरा जो माधुरता है वह तो नित्य नई नई होती है, और अपने अपने प्रेम के अनुरूप भक्त उसका आस्वादन करते हैं। जिसका जितना प्रेम होता है उतना उसका आस्वादन वो कर पाता है। एक भक्त बोले कि क्या भगवान अपने प्रेम का आस्वादन नहीं करा सकते हैं? अरे वो कराते नहीं है, जब तक भक्ति नहीं करोगे, अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर लोगे, वो कराएंगे नहीं। ये भगवान की अद्भुत शक्ति है। क्या है श्लोक? नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूणोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। जरासंध भी भगवान कृष्ण के सामने था, दुर्योधन भी था, तो क्या वो सुख अनुभव कर रहे थे? नहीं। और गोपगण इतना सुख अनुभव कर रहे हैं कि कृष्ण अगर पेड़ के पीछे से ऐसे जा रहे हैं तो एक क्षण का भी वह विरह अनुभव नहीं, विरह सहन नहीं कर पा रहे। तो स्वयं की कमी है, भगवान की कोई कमी इसमें नहीं है, समझ रहे ना ये बात। मुझे हंसी आई, लोग कैसे कैसे प्रश्न करते हैं। मैंने बताया था कि भाई शिला भक्ति सिद्धांत, आप लोग रियली हंसने वाले हैं इस पे। शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी ने 10 साल भजन किया, 3 लाख नाम जप करके तो उनको पंच तत्व के दर्शन हुए। तो बोले भक्त, प्रभु जी ये पंच तत्व मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश? मैंने कहा रामायण समाप्त हो गई, इनको समझ में नहीं आया पंच तत्व कौन है। उन्होंने कहा नहीं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। और बड़ा गंभीरता से प्रश्न किया कि प्रभु पंच तत्व क्या, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश? तो हमने कहा भाई पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को देखने के लिए भजन की जरूरत है? तो क्या तो दिख ही रहा है आपको? कभी कभी ऐसा प्रश्न करते हैं, क्या उत्तर देंगे उसका? मैंने बताया कि पंच तत्व करती ये नहीं है। खैर कोई बात नहीं, बड़े भोलेपन से पूछा था। खैर बात आ रही थी कि भगवान का प्रेम का माधुरी का आस्वादन कौन करता है? अपने प्रेम के अनुसार व्यक्ति कर पाता है। तो अगर हम लोग प्रेम का अनुभव नहीं कर रहे हैं, भगवान की मधुरता का अनुभव नहीं कर रहे हैं, भगवान की गलती नहीं है, हमारी गलती है कि प्रेम डेवलप नहीं किया। तो घबराने की जरूरत नहीं है, भक्ति करिए तो आप समझ पाएंगे आगे। दर्पणाद्य देखी यदि आपन माधुरी आस्वादित होए लोभ आस्वादिते नारी। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट। यदि मैं अपने माधुर को दर्पण में देखता हूं तो उसका आस्वादन करने का मन करता है, किंतु फिर भी मैं ऐसा कर नहीं सकता। यहां पे वही बात है, दर्पण की उपमा किससे दी जा रही है? श्रीमती राधारानी के प्रेम से। तो जब भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि अगर इस प्रकार का प्रेम मुझे प्राप्त होगा तभी मैं अपने माधुर्य का आस्वादन कर पाऊंगा। और इसको भी आपने श्लोक में सीखा था, स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा की दृशो वा मदीया। मेरी वह मधुरिमा क्या है जिसका आस्वादन श्रीमती राधारानी करती है? दूसरा कारण था। पहला कारण क्या था? श्रीमती राधारानी की प्रेम की महिमा क्या है। दूसरा कारण क्या है कि मेरी मधुरता वो क्या है जो श्रीमती राधारानी अपने प्रेम के द्वारा आस्वादन करती है। तीसरा है कि उन्हें कैसा सुख प्राप्त होता है। ये लोभ भगवान कृष्ण के हृदय में हुआ। विचार करिए यदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप होते तबे मन धाये। अब वो कह रहे हैं कि अब अगर मैं इसका आस्वादन करने का उपाय के बारे में विचार करता हूं, भाई कैसे मैं अपनी मधुरता का आस्वादन करूं, तो यही समझ में आता है कि मुझे श्रीमती राधारानी के स्वरूप को स्वीकार करना होगा। ठीक है, भक्त के भाव को स्वीकार किए बिना भगवान भी अपनी मधुरता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। श्लोक को बोलना बड़ा कठिन है। अपरिकलित पूर्व कश्च चमत्कार कारी स्फुरति मम गरीयान एष माधुर्य पूरः अहय अयमहमपि हन्त प्रेक्षयम् लुब्ध चेताः सर्वसम उपभोक्तुम् कामये राधिकेव। इसका अनुवाद पढ़ देता हूं मैं आपके सामने। वह कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर की प्रचुरता को प्रकट कर रहा है, जिसका इससे पूर्व कभी अनुभव नहीं किया गया और जो सबको आश्चर्य में डाल रहा है? हाय, मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो गया है और मैं स्वयं तीव्रता से श्रीमती राधारानी की भांति इसका उपभोग करना चाहता हूँ। इसका यह लिया गया है ललित माधव से। देखिए हुआ क्या, भगवान कृष्ण ने द्वारका में रत्न जड़ित एक फुव्वारे में अपने ही सौंदर्य का प्रतिबिंब देखा, तो वह अपने ही सुंदरता को आस्वादन करने के लिए वैसे लोभ से ग्रसित हो गए जिस प्रकार से श्रीमती राधारानी कृष्ण का करती है। तो इसलिए श्लोक रखा गया है कि कृष्ण अपने ही सौंदर्य का अनुभव, माधुरता का अनुभव करना चाहते थे, इसलिए उनकी इच्छा हो कि वह राधा रानी के भाव को स्वीकार करें और अपने मधुरता का अनुभव कर पाए। ठीक है, इस श्लोक इसलिए यहां पे रखा गया है। कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। कृष्ण के माधुर्य का एक स्वाभाविक बल है कि कृष्ण आदि के शब्द यहाँ पे क्या है, कृष्ण समेत सब नर नारियों को चंचल कर देता है। मतलब उनको आस्वादन करने के लिए, उस मधुरता का आस्वादन करने के लिए वह उनको विवश कर देता है। हाँ, ऐसे कह सकते हैं, कृष्ण को स्वयं ही उनका सुंदरता आकर्षित करती है। अब ये समझना कठिन नहीं है, जो लोग बहुत सुंदर होते हैं वो अपना ही फोटो अपने को देखते रहते दर्पण में, यहाँ सेटिंग करेंगे, वहां सेटिंग करेंगे, ऐसे गाल यहाँ करते ही हैं लोग, मेकअप लगाएंगे जो भी करते हो, और लड़के लोग हेयर स्टाइल बनाते रहते हैं, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, हैंडसम दिख रहा हूँ। तब ये कितना हैंडसम है शरीर, इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण अपनी मधुरता को देख करके इस प्रकार से आकर्षित होते हैं। तो सभी लोग आकर्षित होते हैं, कृष्ण भी आकर्षित होते हैं, तो यह लोभ उनके मन में उत्पन्न हुआ। श्रवण दर्शन आकर्षे सर्व माना, आपना आस्वादित कृष्ण करे न यतन। श्रवण का अर्थ है उनकी, यहां पर उपाद अनुवाद कर रहे, उनकी मधुर वाणी तथा बांसुरी को सुन करके। देखिए अब कितना सुंदर बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, श्रवण का मतलब है उनके शब्दों को सुन करके। मधुरया गिरा वल्गु वाक्य इत्यादि गोपियां कहती हैं, आपकी सुंदर वाणी को स्मरण करते हैं हम लोग, और उनके सौंदर्य को देखकर सबके मन आकर्षित हो जाते हैं, यहां तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उस माधुर का आस्वादन करने का प्रयास करते हैं। तो यहां बात खाली यही आ रही है कि कृष्ण अपने मधुरता का अनुभव करना चाहते हैं। ए माधुर्य अमृत पान सदा जयी करे, तृष्णा शांति नहे तृष्णा बाढ़े निरंतर। ये बड़ा सुंदर बात है। अच्छा एक और बात मधुरता की भगवान कृष्ण की ऐसी है कि यहाँ पे आप कुछ मधुर वस्तु खाते हैं, कितना भी मधुर वस्तु खाइए, कितनी भी अच्छी वस्तु हो, हम बाद में तृप्त हो जाते हैं कि नहीं? एक जलेबी, दो जलेबी, तीन जलेबी, दस जलेबी, बीस जलेबी, मारोगे क्या? नहीं चाहिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन कह रहे नहीं। ए माधुर्य अमृत पान सदा जय करे, जो इस माधुर्य अमृत का, कृष्ण के वचनों का, कृष्ण की बांसुरी का, कृष्ण के सौंदर्य का जो पान कर रहा है, जिसको प्रेम हो गया है, तो तृष्णा शांति नहीं, उसकी तृष्णा शांत नहीं होती है, तृष्णा बाढ़े निरंतर है, तृष्णा समझ रहे, आस्वादन करने की इच्छा बढ़ जाती है। हाँ आप प्यास कह सकते, जैसे मैं पानी पी रहा हूं, बहुत अच्छा लगा, एक मिनट और, बहुत अच्छा लगा। अब अगर 3 लीटर भर दिया जाए पेट में तो अरे मारोगे क्या, मिला पिला पिला के मारोगे क्या? ऐसा बोलेंगे हम लोग, लेकिन ये एक अद्भुत बात है। देखिए अगर आप लोगों को भागवत का श्लोक याद हो, प्रथम स्कंद का, शौनक आदि ऋषि का, वयम शौनक आदि ऋषि ना, वयम तु ना वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यशुण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। उसको व्याख्या की गई थी, कान जो है आकाश स्वरूप है इत्यादि इत्यादि। तो जितना व्यक्ति भगवान कृष्ण का आस्वादन करता है उतनी उसकी इच्छा बढ़ती जाती है, नाम जप करेगा तो नाम जप करने की इच्छा बढ़ती जाती है, अगर अपराध ना करे, कथा सुनेगा तो कथा सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है, कृष्ण को देखेगा तो कृष्ण को देखने की इच्छा बढ़ जाती है। ये समझ रहे हैं, यही जीवन की सफलता है। गोपियां कई बार कंप्लेन करती हैं, अरे तो हम तो कृष्ण के जो कुंडल है उससे ऊपर ही नहीं देख पाए, चेहरे तक तो पहुंच ही नहीं पाए। हम लोग उस बात की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इतना प्रेम नहीं है, तो भगवान के रूप में हमारा मन तो टिकता नहीं है, लेकिन एक एक अंग को भी तृप्ति से नहीं देख पाती हैं गोपियां, इतना सुंदरता का अनुभव वो लोग करती हैं, इतने माधुर्य का अनुभव करती हैं। क्यों करती हैं नित्य प्रभु, क्यों करती हैं? स्वाभाविक प्रेम है इस कारण से, ठीक है। अतृप्त हैया करे विधि रनिंदन, अविधिग्ध विधि भाल ना जाने सृजन। अतृप्त होने के कारण वह विधि यानी ब्रह्मा जी की निंदा करती हैं, अविदग्ध विधि भाल ना जाने सृजन। ये विधि ब्रह्मा जी कोई एक्सपर्ट नहीं है, इनको सृष्टि करना नहीं आता है, ये बोल रहे हैं। कोटि नेत्र नाही दिला सबे दिल दुई, ताहते निमिष कृष्ण की देखी बेमुई। कोटि नेत्र नाही दिला, हमें करोड़ों करोड़ों नेत्र नहीं दिए, सबे दिला दुई, और दिए केवल 2 नेत्र, ताहते निमिष, और उसके ऊपर आप ये शटर लगा दिया, खटखट खटखट खटखट, कृष्ण की देखी बेमुई, मैं कृष्ण को कैसे देख पाऊंगी। महाराज से सुना था कि इंद्र कामी है और वह अप्सराओं को देता है, देखता है, तो उनको दे दी 1000 आंख, और हम कृष्ण को देखना चाहती हैं, हमें दी केवल 2 आंख, और उसमें भी शटर लगा दिया, ठक 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 ठक। तो समझ गई, वो कहते हैं इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि मैनेजर को गाली खानी ही पड़ती है। कितने बड़े मैनेजर बन जाइए, कोई ना कोई दोष जरूर देखेगा आपके आपके कार्य में, है कि नहीं। अब आंखें में पलक बनाइए आंखों की रक्षा करने के लिए, लेकिन अतृप्त हैं गोपियां, तो इस कारण से ब्रह्मा जी को उलाहना दे रही है। श्लोक सामने है, आप जानते हो उसे गाना, अटतियत भवान अहनिकाननम त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम कुटिलकुंतलम श्रीमुखं चते जड उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशम्। तो यहाँ कह रही हैं, हे कृष्ण, गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, जब आप दिन में वन में चले जाते हैं और हम आपके सुंदर गुंगराले बालों से घिरे मधुर मुखमंडल को नहीं देखते, तो हमारे लिए आधा क्षण भी एक युग के समान बन जाता है। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, आपको देखे बिना, तब हम उस सृष्टा को निरा मूर्ख मानती हैं जिसने हमारी उन आंखों के ऊपर पलकें बना दी हैं जिनसे हम आपको देखती हैं। तो ये श्लोक समझ रहे हैं ना क्यों बोल रहे हैं? ये सारे श्लोकों का वर्णन भगवान कृष्ण के माधुर्य की महिमा का वर्णन करने के लिए। स्पष्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? गोपियों का प्रेम है इस कारण से वो इस प्रकार का अनुभव कर पाती हैं। तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। गोप्यश्च कृष्णम उपलब्ध्या चिरा, नहीं नहीं, ये सारे श्लोक की एक दिक्कत ये कि एक ही तरह से नहीं बोले जाते, सारे श्लोक अलग अलग तरह से बोलते हैं। गोप्यश्च कृष्णम उपलब्ध चिराद अभिष्टम, हाँ, गोप्यश्च कृष्णम उपलब्ध चिराद अभिष्टम यत् प्रेक्षणे दृशशु पक्ष्म कृतम शपन्ति त्रिग्भिर् हृदि कृतम अलम परिरभ्य सर्वास तद्भावम आपूर अपि नित्य युजाम दुरापम। इसका अर्थ मैं पढ़ दे रहा हूं। गोपियों ने दीर्घकालीन विछोह के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा। उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदयों में उन्हें प्राप्त किया और उनका आलिंगन किया। उन्हें इतना उत्कट हर्ष हुआ कि सिद्ध योगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। गोपियां सृष्टा को यह कहकर कोसने लगी कि उसने पलकें क्यों बनाई जो उनके देखने में बाधक बन रही हैं। तो ये पहले तो आपने सुना, ये जो पहला श्लोक था वो किसके संबंध में था? जब भगवान कृष्ण ब्रज में थे और वन में जाते हैं और वहां गोपियां इस प्रकार से कह रही हैं उनके भगवान कृष्ण के संबंध में कि आपको देखने के लिए हम इतनी आतुर हैं, ब्रह्मा जी को आंखें बनाने नहीं आई, दो ही आंखें दी हैं, पलकें बना दी हैं। और यहाँ पे भी वो कह रहे हैं जब कुरुक्षेत्र में गोपियां मिलती हैं तो वो कृष्ण को देख के बहुत सुख का अनुभव करती हैं और फिर इसी प्रकार से वह ब्रह्मा जी को उलाहना देती हैं कि इनको समझ में नहीं आ आंखें कैसे बनानी चाहिए, दो आंखें दी और उसको भी शटर लगा दिया। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कृष्ण की मधुरता के बारे में बोल रहे हैं। कृष्णावलोकन बिना नेत्र फल नाही आन, जेई जन कृष्ण देखे से भाग्यवान। कृष्ण का अवलोकन किए बिना नेत्र का फल नहीं है, वो व्यर्थ हो गया नेत्र। जेई जन कृष्ण देखे से भाग्यवान, जो जन कृष्ण को देखता है वो भाग्यवान है। इस संबंध में छोटी सी लीला है। अद्वैत आचार्य जी जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं, महाप्रभु जाते हैं और अद्वैत आचार्य जी परिक्रमा कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद चतन महाप्रभु से कहते हैं कि आदित्याचार्य जी, भगवान को परिक्रमा करने का क्या फायदा है? तो उन्हें बहुत सारे कोटेशन देते हैं, ये फायदा है, वो फायदा है, मुक्त हो जाता है, ये है, वो है। तो महाप्रभु कहते हैं, आज मैंने आपको हरा दिया। कैसे हरा दिया आपने? कहा, देखिए, जितने समय आप परिक्रमा कर रहे थे उतने समय मैंने जगन्नाथ का कृष्ण के दर्शन किया और उनके दर्शन का लाभ प्राप्त किया। तो चतन भागवत में बात है, मतलब कहने का अर्थ है कि मैं कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि परिक्रमा करिए या नहीं करिए, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भगवान को देखना चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे नियमित रूप से भगवान को देखने के कारण भगवान में आसक्ति हो जाती है। मंगल आरती दर्शन किए बिना एक व्याकुलता रहती है, मंगल आरती दर्शन हो जाए तो फिर हाँ, सफल मानते हैं अपने आप को। हर भक्त इस प्रकार से समझता है जो साधना करता है इस प्रकार से। हम तो अब ऑनलाइन भी आप लोगों को सुविधा दे रहे हैं, इससे कोई कठिनाई तो नहीं है। कभी कभी भक्त लोग ऐसा गलत करते हैं कि बस गए और एक दंडवत शब्द इस्तेमाल करूंगा, दंडवत डाल के चले गए। दंडवत प्रणाम किया ये नहीं कहूंगा, दंडवत डाल के बढ़ गए आगे। आपने देखा है? लोग दंडवत कर, अरे देखे नहीं किसको दंडवत कर रहे हैं, कहां पहुंच रहा है आपका दंडवत, उसे भी मतलब नहीं, देखे भी नहीं। जबकि हम जैसे नए भक्तों के लिए विशेष है कि वो कृष्ण को देखें, महाराज इस बात को बोलते हैं। और आपने सुना ही था कि एक बार भी भगवान कृष्ण के स्वरूप को मन में जबरदस्ती भी लेके आता है तो भगवान उसे अपना धाम देते हैं। और आप रूप गोस्वामी जी की बात भी सुनते हैं, तन्नाम रूप चरिता, उनके नाम उच्चारण करना, उनके रूप को देखना, उनके चरित्र को सुनना, इन तीनों में संलग्न होना, यही सारे उपदेशों का सार है। समझ रहे ना बात? अब ये शिक्षा है जिसको जैसे जैसे ग्रहण करना अपना करे, लेकिन ये बात बोल रहे हैं, जय जन कृष्ण देखे सही भाग्यवान। तो ये देखते देखते ही देखते ही देखते कृष्ण के सौंदर्य का अनुभव होने लगता है। ओके, उसको वह एक श्लोक से पुष्ट कर रहे हैं। अक्ष्वण अक्ष्वणताम फलमिदम न परम विदामः सख्य पशून अनुविवेशयोतयोर वयस्य हि वक्त्रं व्रजेश सुतयोर अनुवेडु जुष्टम यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियों ने कहा, हे सखियों, वे आंखें जो महाराज नंद के पुत्रों के सुंदर, नंद के पुत्रों के सुंदर, पुत्र मतलब कृष्ण बलराम, नंद के पुत्रों के सुंदर मुखों का दर्शन करती हैं, निश्चय ही भाग्यशाली हैं। जैसे ही ये दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को अपने आगे रखकर वन में प्रवेश करते हैं, वे अपने होठों पर अपनी बांसुरियां रख लेते हैं और वृंदावन के निवासियों की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं। उनके पास आंखें हैं, हमारे विचार में उनके लिए इससे बढ़कर कोई दर्शनीय वस्तु नहीं है। सॉरी, जिनके पास आंखें हैं। तो ये तो स्पष्ट ही है, यहाँ पे वर्णन हो रहा है अगेन कृष्ण की सौंदर्य की माधुरता का वर्णन कर रहे हैं। गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपं लावण्य सारमस मूर्ध्वर अनन्य सिद्धं दृग्भि पिबन्ति अनुसवाभिनवं दुरापं एकांत धाम यशसः श्रिय ईश्वरस्य। ये एक के बाद एक श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के श्लोक हैं। तो यहाँ पे ये वेणुगीत से नहीं है, ये जब भगवान कृष्ण और बलराम जी अखाड़े में हैं, तो वहां पे जो मथुरा की स्त्रियां हैं वह बोल रही हैं कि गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपम, गोपियों ने क्या तपस्या करी होगी जो इतने सुंदर रूप को वो नित्य देखती थी। लावण्य सारम, जो लावण्य का सार है, असमूर्ध्वम, उसके समान कोई भी नहीं, अनन्य सिद्धम, इसी श्लोक को लेकर के शिला रूप गोस्वामी शब्द यहां बोलते हैं, स्वयं रूप कृष्ण अनन्य सिद्ध, जो है रूप, जो रूप जो किसी अन्य रूप पे आश्रित नहीं है, भगवान कृष्ण के स्वरूप को। दृग्भि पिबन्त अनुसवाभिनवम दुरापम, क्या कह रही है दृग्भि करके, नेत्रों से, क्यों ऐसा कह रही हो कि उन्हें तपस्या करी, तो कहते हैं नेत्रों से वे लगातार पीती हैं। एकांत धाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य, वह एकमात्र यशस यश श्रेय और ऐश्वर्य के धाम हैं। तो ये कृष्ण के माधुर सौंदर्य की मधुरता का वर्णन करने के लिए सारे श्लोक हैं। मैं केवल ये बता रहा हूं कि सब श्लोक हैं क्यों, किस लिए हैं, दूसरा कारण को समझाने के लिए। स्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरिमा, भगवान कृष्ण की मधुरता क्या है, ये सबको समझाने के लिए श्लोक हैं। उनकी वाणी की वेणु के बारे में, उनके रूप के बारे में सब श्लोक हैं। मैं जान रहा हूं कि श्लोक ऊपर से जा रहा होगा कुछ बातें, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आप कभी तो सुनोगे ना, कभी भी नहीं सुनेंगे तो समझ में आने लग जाएगा ना। कोई वस्तु अगर समझने पे नहीं समझ में आए तो उसे कभी नहीं सुनना चाहिए, फिर वो अपने आप समझ में आने लगती है। नहीं पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, सुनने से समझ में आएगा धीरे धीरे। एक बार आपने सुन लिया है, उसका जब अगर पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी समझ में आएगा कि बात क्या हो रही है। अपूर्व माधुरी कृष्णेर अपूर्व तारबल जहारा श्रवण मन है टलमल। अब कृष्ण की माधुरता अपूर्व है, अपूर्व मतलब इसके पहले अद्वितीय, हाँ, अपूर्व तारबल और उसका बल भी अपूर्व है, जिसका श्रवण करने से ही मन चंचल हो जाता है। सोचती है कि मन में इच्छा तो आती होगी ना कि कृष्ण इतने सुंदर हैं, हमें इतने सुंदर क्यों नहीं लगते, सुंदर लगते हैं इतने सुंदर क्यों नहीं लगते। अगर कहें कि हमें कृष्ण सुंदर लगते हैं तो जगत का रूप क्यों आकर्षित कर रहा है हमको, अभी तो कर रहा है ना, क्यों कर रहा है, कभी यानी कृष्ण का रूप पूरी तरह से हमारे हृदय को आकर्षित नहीं किया है, तो हमारी ही गलती है। धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी तो होगा। कृष्ण रे माधुर्य कृष्ण उपजाए लोभा सम्यक आस्वादिते नारे मने रहे शोभा। कृष्ण के माधुर्य में के को का को आस्वादन करने के लिए कृष्ण के मन में लोभ उत्पन्न होने लगा, लेकिन सम्यक आस्वादित उसको ठीक प्रकार से आस्वादन नहीं कर पाए, इसलिए मन में क्षुब्ध हो गया, मन खिन्न हो गया मन ऐसे। द्वितीय हेतु कहिला विवरण, तृतीय हेतु एवे सुनहा लक्षण। हम रिपीट कर देना है, पहला हेतु क्या था? श्रीमती राधा रानी का प्रेम की महिमा क्या है और उस प्रेम के द्वारा वो मेरी मधुरता का कैसा अनुभव करती है, मेरी मधुरता कितनी है जिसका वो अनुभव कर रही है, इसका वर्णन हुआ यहां तक। तीसरे अर्थ यह है कि उस मधुरता का अनुभव करके उन्हें सुख कैसा प्राप्त होता है, उसको बस जानने का लोभ हुआ, तो ये देखिए आगे। आज मैं सोच रहा हूं कि पूरा कर दूं इसको, कोई हां भी नहीं बोल रहा है। कल तो पहले कर दिया था ना क्लास, 15-20 मिनट पहले। अरे पहले क्यों नहीं बताया आपने? आज सोच रहा है कि पूरा कर दें, फिर से हम कल से भागवत 100 पेज। आप लग रहा है पेज काउंट कर रहे हैं, कितने पेज हो गए। ठीक है, तो हमारे पास भी 10 बजे तक का समय है अभी। अत्यंत निगुड़ ए रसे रसे धान, स्वरूप गोसाई मात्र जानी ना एकांत। यह सब रस का अत्यंत गुड़ रहस्य है, इसे केवल स्वरूप गोसाई मात्र ही जानते हैं। जेब के अन्य जाने से होता हाँ है ते, चैतन्य गोसाई ते अत्यंत मर्म जाते। इसका अर्थ क्या कह रहे हैं? यदि कोई अन्य व्यक्ति इसे जानने का दावा करता है तो उसने उनसे ही सुना होगा, क्योंकि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत अंतरक पार्षद थे। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या सीख रहे हैं, ये जितनी भी गुह्य बातें हैं यह व्यक्ति परंपरा में ही बता सकता है, अन्यथा चैतन्य महाप्रभु के बारे में पीएचडी भी कर लेगा तो उसका क्या होगा? परमानेंट हेड डैमेज। समझ में आया? उसे परंपरा में भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण करना पड़ेगा, अपने मनगणन तरीके से करेगा तो ठीक से नहीं समझ सकता है। गोपी गणेर प्रेम रूढ़ भाव नामा, विशुद्ध निर्मल प्रेम कभू न है काम। गोपी गणों का भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसे रूढ़ भाव कहा जाता है। यह पूरी तरह विशुद्ध निर्मल प्रेम है, इसमें काम की गंध मात्र भी नहीं है, उसमें कभी भी अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करने की इच्छा नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ रहा है, इसको जरा आप लोग सब ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रेम एव गोप रामानाम काम इत्यागमत प्रथाम इति उद्वादयोप्येतम वांछन्ति भगवत प्रियाः। गोपियों का शुद्ध प्रेम काम के नाम से विख्यात हो गया है, श्री उद्धव जैसे भगवान के भक्त उस प्रेम का आस्वादन करने की इच्छा करते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, भगवान स्वयं उद्धव जी कहते हैं कि आप मुझे उतने जितने प्रिय हो उतना मुझे अपना स्वरूप भी प्रिय नहीं है। तो वह उद्धव जी भगवान गोपियों के प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं कि कैसा उनका प्रेम है मैं भी समझूं, तो समझ लेना चाहिए कि उसमें काम की गंध हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए यह कहना कि कृष्ण 6 अवतार थे लेकिन गोपियों का संग करके बिगड़ गए, तो वो समझ लीजिए वो आदमी पीएचडी करके आया है। पीएचडी समझ गए ना, परमानेंट हेड डैमेज, दिमाग खराब हो गया, उसको पता ही नहीं कि क्या है चीज काम। अब बहुत सुंदर बहुत अच्छा व्याख्या हो रही है, समझिए। काम प्रेम दोहार विभिन्न लक्षण, लोह और हेमा यही छे स्वरूपे विलक्षण। अब देखिए कह रहे काम और प्रेम ये दो दुहाकार विभिन्न लक्षण, ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं और उनके अलग लक्षण हैं। आप ये कह सकते हो कि भाई ये सोने से बना है ना, मैं सोने के ग्लास में पानी पी रहा हूं। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैं मेटल के ग्लास में पानी पी रहा हूं, ये भी नहीं बता सकते हाँ या ना। इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, कितने नंबर आए केमिस्ट्री में? मैं मेटल के ग्लास से पानी पी रहा हूं कि नहीं? ठीक है, अगर ये सोने का होता तब भी मैं बोल सकता था कि मैं मेटल के ग्लास से पानी पी रहा हूं। दोनों मेटल हैं, ठीक, तो दोनों एक ही हैं फिर तो, अलग अलग है ना, गुणवत्ता में बिल्कुल अलग हो गए। तो काम में भी इच्छा है और प्रेम में भी इच्छा है, लेकिन काम में व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है और इसलिए ऐसा लगता है कि सामने वाले से प्रेम कर रहा है, लेकिन वह उससे प्रेम नहीं करता है, वह अपनी इंद्रिय भोग से प्रेम करता है। और प्रेम में कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा होती, अपने को संतुष्ट करने की इच्छा नहीं होती। ये बात क्लियर समझ लीजिएगा, फिर आगे का डिस्कशन आपको समझ में आएगा। लोह और हेमा यही छे स्वरूपे विलक्षण। लोह मतलब लोहा और सोना दोनों का बिल्कुल अलग अलग स्वरूप होता है, वो देखने में भले ही मेटल मतलब धातु है लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, अब बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सब जानते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। क्लियर समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है तो उसको काम कहते हैं, लेकिन अगर वह कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है तो उसे प्रेम कहते हैं। अगर हम हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो ये प्रेम है। लेकिन केवल अपना भोग करना चाहते हैं तो फिर काम है। तो गोपियां कभी भी कृष्ण से अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहती हैं। अब देखिए, कामेरा तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम तप बल। कामेर का उद्देश्य है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों का भोग, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि चाहता है केवल। ये लोगों को विश्वास नहीं होता है लेकिन इस जगत में प्रेम नहीं है, इस जगत में केवल काम है। हर व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों की संतुष्टि चाहता है। वह तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं और तब वह अपनों का डिस्कशन बंद हो जाए तो हम अपना पढ़ाएं, क्या प्रॉब्लम है, क्या कठिनाई हो रही? ऐसे चला दे, ठीक, गर्मी लग रही इससे। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, व्यक्ति अपने भोग की इच्छा चाहता है, इसको काम का मुख्य लक्षण कहते हैं, काम का लक्षण यही है। लेकिन अगर केवल कृष्ण का सुख तात्पर्य है, केवल कृष्ण की सुख विधा, कृष्ण की प्रीति विधान करना चाहता है, तो ये प्रेम का प्रबल लक्षण है। वह अपने सुख दुख का विचार नहीं करता, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम साधकों के लिए। अगर कोई व्यक्ति सोचे भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मंगल आरती नहीं जाऊंगा, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं जप नहीं करूंगा, तो फिर हम अपनी इंद्रिय सुख के लिए भजन कर रहे हैं, हम फिर प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमें अपने सुख दुख के विचार को छोड़ करके भगवान सुखी होंगे इसलिए भजन करना चाहिए। समझ रहे हैं? आज ही जप के समय दो लोगों ने दो फीडबैक दिए। एक भक्त ने बोला, प्रभु जी ये जप करना इतना कठिन क्यों लगता है? और बस दो या तीन, मैंने कहा गो ऑन चैंटिंग, ये उत्तर था, आप जप करते रहिए। और दूसरा एक माता जी ने कहा, प्रभु जी जप कितना कितना अच्छा लगता है, आपने बोला ध्यान पूर्वक करो और मैं कर रही हूं तो मुझे लग रहा है कि क्या वस्तु है। अब बताइए क्या उत्तर है? गो ऑन चैंटिंग। क्योंकि हो सकता हो अगले दिन माता जी को खराब लगे, प्रभु जी को अच्छा लगे, भगवान तो करते ही हैं। आप सभी देखो, कभी अच्छा लगता है, कभी लगता है अरे बड़ा भार लग गया, तो क्या हम जब करना बंद कर देंगे? ऐसा तो ना होता है। ये समझना चाहिए कि हम कृष्ण के सुख के लिए कर रहे हैं, तब हम वाकई कृष्ण की भक्ति का सुख अनुभव कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म, दुस्त्यज आर्य पथ निज परिजान, स्वजन करे यत ताड़न भर्सन, सर्व त्याग करी कृष्ण करे कृष्ण र भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। लोक धर्म, जो लोक का धर्म होता है सामान्य लोक में जो बताया जाता है तो करना चाहिए, वेद धर्म वेद के अनुसार जो धर्म दिया गया है, देह धर्म देह के अनुसार जो कर्म होना चाहिए, और कर्म लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख, इस सब जो बहुत दुस्तज है उसको त्याग करके, यहाँ तक कि अपने परिजनों का भी त्याग करके, स्वजन करे या तो ताड़न भर्सन, उनके जो परिवार वाले थे उनको डांटते थे, सबका त्याग करके उन्हें कृष्ण का भजन किया। ये गोपियों का विशेष प्रेम है। कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन, कृष्ण सुख के हेतु के लिए ऐसा उन्होंने किया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों के प्रेम को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि उसमें अपने लिए कुछ है ही नहीं, केवल कृष्ण के सुख के लिए है। ठीक है, और एक बात आप देख सकते हैं कि अन्यों को इस प्रकार से नहीं करना पड़ा। गोप सखाओं को डांट नहीं पड़ती थी अगर वो कृष्ण के साथ जाते थे, जाते थे डांट पड़ती थी, कोई कठिनाई थी? और किसी को वो कठिनाई नहीं है, लेकिन केवल गोपियों को इस प्रकार की कठिनाई देखनी पड़ती थी। इहा के कही ए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्र यही चे नाही कोनो दाग। तो ये जो उनके कृष्ण के प्रति प्रीति है वो कैसी है? यह भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग कहलाता है, जिस जो गोपियों का प्रेम है भगवान के प्रति, और यह स्वच्छ साफ सुथरे सफेद वस्त्र की तरह है जिसमें कोई दाग नहीं है। दाग मतलब अपने इंद्र तृप्ति की एक लेश मात्र भी इच्छा नहीं है।
अतेव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर।
कितना सुंदर कविता है। तो इसलिए समझना चाहिए कि काम और प्रेम में बहुत अंतर है। जैसे काम क्या है, घोर अंधकार की तरह, और प्रेम कैसा है, निर्मल भास्कर। भास्कर मतलब सूर्य के समान एकदम।
अतेव गोपी गणेर नाही काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध।
इसलिए गोपी गणों के बीच में, हृदय में कोई काम की गंध भी नहीं। गंध समझते हैं, स्मेल, स्मेल भी नहीं है। अपने इंद्रिय सुख की इच्छा की गंध भी नहीं है। कृष्ण सुख लागी मात्र, केवल कृष्ण सुखी हो जाएं, इसीलिए कृष्ण से उनका संबंध रहता है।
बात बहुत आसान लगती है, कितना कठिन है ना।
बहुत आसान लगती है, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। कृष्ण से संबंध केवल कृष्ण को सुख देने के लिए। ये जितना इतना आसान है नहीं जितना कि पढ़ने में लगता है। अपनी सेवा के बदले में कुछ भी इच्छा नहीं करना।
यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद व्यथते न किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः।
हे प्रिय, मैं इसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। भगवान कृष्ण को गोपियां कह रही हैं, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें अपने वक्षस्थलों पर धरती हुए धीर से रखती हैं कि कहीं आपके चरणों में चोट न लग जाए। हमारे प्राण एकमात्र आप पर आश्रित हैं, इसलिए हमारे मन इस आशंका से भरे रहते हैं कि आपके कोमल चरण जंगल के मार्ग पर चलते हुए कहीं कंकड़ों से छत विछत न हो जाए। तो गोपियां सोचती थी इस प्रकार से कि जब कृष्ण चल रहे हैं, और कृष्ण चप्पल तो नहीं पहनते हैं, तो उनके मन में भावना आ रही कि उनके चरण कमल तो बहुत कोमल है, और जब वह चलते होंगे तो उनको कांटे चुभते होंगे या कंकड़ चुभते होंगे। सुन सुन कर वो सोच सोच के बेहोश हो जाती थी। जबकि वृंदावन में जो जितने भी कंकड़ पत्थर हैं, वो जब कृष्ण के ऊपर पैर रखते हैं, अपने चरण कमल रखते हैं, वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन गोपियां से सोच रही हैं कि नहीं नहीं इनको कितना कष्ट होता होगा। तो मतलब केवल कृष्ण के सुख विधान की चिंता वो करती हैं। तो श्लोक इसलिए यहाँ पे रखा गया है।
आत्मा सुख दुखे गोपीर नाही का विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार।
आत्मा अपने सुख और दुख के संबंध में गोपियों का कोई विचार नहीं रहता है, केवल कृष्ण के सुख की हेतु ही उनकी चेष्टा रहती है, मन का व्यवहार रहता है। अब एक जानते हैं इस बात को कि एक बार भगवान कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि सबसे बच्चा भक्त कौन है। तो नारद जी को बोले कि कहो मेरे भक्तों से जाकर कि मेरे को बुखार हो रखा है, और भक्तों के चरण की धूली मुझे प्राप्त होगी तो मेरा बुखार जाएगा। मैं अपने भक्तों के चरण की धूली को अपने माथे पे आलेपन करूंगा तब मेरा बुखार जाएगा। तो जिस भक्त के पास भी जाते बोलते नारद जी कि भगवान कृष्ण को बुखार हो गया है, अच्छा तो वो कहने की दवाई है। तो दवाई क्या है? दवाई ये है कि भक्त के चरण की धूल मिल जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, हम चरण की धूल, अरे नहीं नहीं, हम देंगे तो हम नरक में चले जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है। तो कोई नहीं दिया। तो फिर वो जब गोपियों के पास गए तो गोपियां यमुना में जाकर के अपने पैरों को गीला करी। अपने भक्तों से सुना है ये कथा, कहाँ की है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सुना है भक्तों से। और उसके बाद अपने पाँव को यमुना जी की बालू में रखी ताकि खूब उसमें बालू लपेट जाए, और उसका कहा ले लीजिए आप। तो कहने अरे आपको डर नहीं है कि आपको अंदर जाना पड़ेगा? तो कहते हमें कृष्ण के थोड़ा सा भी दुख कम हो जाए और उसके लिए हमें हमेशा के लिए नरक में रहना पड़े तो भी हमारा वो परम सुख है। तो ये सब बातें आप शिक्षाष्टकम के आखिरी श्लोक में भी देखते हैं देखेंगे। मेरी इच्छा हो रही कि इसके बाद शिक्षाष्टकम को भी पढ़ा दिया जाए। रोजी गाते हैं, बहुत अच्छा है वो। जो भी है, अभी तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि केवल कृष्ण के सुख की चेष्टा ही उनका मन का व्यवहार होता है।
कृष्ण लागी और सब करे परित्याग, कृष्ण से सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। कृष्ण के लिए वह सब कुछ परित्याग करने कर देती हैं, कृष्ण के सुख के हेतु ये उनका शुद्ध अनुराग है। एवं मदर्थो जित लोक वेदा स्वानाम हि वो मई अनुवृत्ते बलः, मया परोक्षम भजता तिरोहितम मासूयितुम मारहत तत्प्रियम प्रियाः। श्लोक क्यों बोला जा रहा है? हाँ, ये गोपियों के को बोला गया है भगवान कृष्ण के द्वारा। मेरी प्रिय गोपियों, तुम सबने मेरे लिए सामाजिक रीतियों, शास्त्रीय आदेशों और अपने परिजनों का परित्याग किया है। मैं तुम्हारी एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से ही तुम लोगों के पीछे छिप गया था, क्योंकि मैं तुम्हारे ही लाभ के लिए छिप गया था, अतएव तुम लोगों को मुझ पर अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे कब बोली गई है? 10, 32, 21 में, जब भगवान कृष्ण रासलीला से अपने को तिरोहित कर लिए थे, वहां से अपने स्वरूप हटा लिए थे, तो गोपियां उनको खोजते खोजते ढूंढती हैं, बहुत वो रोती हैं, फिर कृष्ण उनके सामने आते हैं, तो वो कहती हैं तब किस प्रकार के प्रेमी हैं। वो तीन चार बातें बोलती हैं, एक व्यक्ति को प्रेम करता है तो वो भी प्रेम करता है, एक व्यक्ति को प्रेम करता तो वो प्रेम नहीं करने से भी प्रेम करता है, एक व्यक्ति प्रेम करता है जो उससे प्रेम करता है उससे वो प्रेम नहीं करता है, ऐसे करके बहुत बातें बोलती, तब कौन से प्रेमी है? तो भगवान कृष्ण कहा, नहीं, इन तीनों में से कोई भी नहीं हूं मैं, आपका प्रेम बढ़ाने के लिए आप लोगों के सामने से ओझल हो गया था, मैं हमेशा ही प्रेम का आदान प्रदान करता हूं, ये बात बोल रहा है। कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व हते, ये ऐछे भजे कृष्ण तारे भजे तैछे। कृष्ण की एक प्रतिज्ञा थी पहले कि जो उनका जिस प्रकार से भजन करता है वो उसका वैसा भजन करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य हम, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। भगवद गीता का श्लोक है, जो व्यक्ति जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं उसका वैसे ही भजन करता हूँ। इसकी व्याख्या हमने पहले भी करी थी, अगर कोई भगवान कृष्ण को बेटा मानता है तो वो बेटा बनने के लिए तैयार है, पिता मानता है तो पिता बनने के लिए तैयार है, सखा मानता है, प्रेमी मानता है, उस प्रकार से भगवान भजन करते हैं, ये बात हमारे श्लोक में बोल रहे हैं। से प्रतिज्ञा भंग हैला गोपी र भजने तहाता प्रमाण कृष्ण श्री मुख वचने। लेकिन भगवान की यह प्रतिज्ञा गोपियों के संबंध में, गोपियों के भजन के संबंध में भंग हो गई। क्या प्रतिज्ञा थी? जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है उसका मैं उसी प्रकार से भजन करता हूं, ये भगवान की प्रतिज्ञा थी। लेकिन गोपियों के संबंध में भगवान कृष्ण की ये प्रतिज्ञा भंग हो गई। इसका प्रमाण भगवान श्री कृष्ण का श्रीमुख से जो वचन है वो स्वयं है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ना पारये हम निरवध्य संयुजाम ससाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, यामा भजन दुर्जय गेह श्रृंखला संवृश्च तद यह प्रतियातु साधुना। बहुत सुंदर श्लोक है। हे गोपियों, मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवा का ऋण ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। मतलब जैसा आपने मेरा भजन किया है मैं वैसा आपका भजन नहीं कर सकता, ये इसलिए श्लोक बोल रहे हैं। मुझसे तुम लोगों का संबंध भर्सना से परे है, किसी को भी गोपियों में दोष नहीं निकालना चाहिए। तुम लोगों ने उन सारे पारिवारिक बंधनों को तोड़कर मेरी पूजा की है जिसको तोड़ पाना कठिन होता है, अतएव तुम लोगों के यशस्वी कार्य ही तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान है, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारे प्रेम का पुरस्कार है, ये कह लीजिए। मैं आपके प्रेम का प्रतिदान नहीं कर सकता, ये कृष्ण कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जितना भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है वह कह रहे हैं कि गोपियों मैं आपके प्रेम का प्रतिदान नहीं कर सकता, ये बात बोल रहे। तब ये देखिए गोपीर निज देह देह प्रीत से हो तो कृष्णेर लागी जानी हा निश्चय निश्चित। तो अब कोई कहेगा, नहीं हम तो देख रहे हैं कि गोपियां अपने अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से सजाया करती थी, तो आप ही कैसे कह सकते हो कि भाई उनको कोई अपने देह के प्रति आसक्ति नहीं थी? तो कह रहे हैं तब ये देखिए गोपीर निज देह प्रीति, अगर आप देख रहे हैं कि गोपियों की अपने देह के प्रति कोई प्रीति है तो सेहत तो कृष्ण रलागी, तो समझना चाहिए कि वह कृष्ण के लिए ही है। जानी है निश्चित, निश्चित समझ लो कि वह कृष्ण को सुखी करने के लिए ही है, उसमें कोई अपना सौंदर्य बढ़ाने की इच्छा नहीं है। इस जगत में लोग सुंदर दिखना चाहते हैं क्यों? ताकि इस जगत के केंद्र बने, लोग समझें कि वो कितने सुंदर हैं, यही तो कारण है ना। लेकिन इस प्रकार की इच्छा गोपियों की नहीं थी।
ए देह केलू आमी कृष्ण समर्पण तादा तारा धन तारा इहा संभोग साधन। ये देह है, ये शरीर मैं कृष्ण को समर्पित करूंगी और ये कृष्ण का धन है, कृष्ण की सेवा के लिए और कृष्ण को सुखी करने का साधन है। ए देह स्पर्शन दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण इह लागी करे देहेर मार्जन भूषण। इस शरीर को देख करके स्पर्श करके कृष्ण को संतुष्टि प्राप्त होगी, इसलिए वह शरीर का मार्जन करती थी और उनको आभूषण से सजाती थी। अब हमारे लिए क्या आवश्यक है? अगर हम हिप्पी जैसी दाढ़ी बना अगर हिप्पी जैसी दाढ़ी बना करके, समझ रहे ना, तिलक ना लगा करके पैंट सेंट पहन करके भगवान के पास जाएंगे तो अब ये तो कोई प्रेम का लक्षण नहीं। इतना उच्च विचार तो गोपी जैसे हमारा नहीं है, कम से कम साफ धोती कुर्ता पहन करके तिलक पिलक लगा करके तो जाना चाहिए। हमारे एक आईआईटी के सीनियर हैं, आज उनका व्हाट्सअप देखा वही दाढ़ी बढ़ी हुई है और मुझे लगी हुई है। आपको ये बात कुछ विशेष नहीं लग रही, बहुत गंभीर बात है। एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ योर इंटरनल कल्टिवेशन इज ए वेरी 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 बहुत ही हैवी बात मैं कहना चाह रहा हूं, समझ लें। एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ योर इंटरनल कल्टिवेशन। भगवान कृष्ण से भक्ति कर रहे हैं, आप कह सकते हो कि दाढ़ी बढ़ा के भी कर सकते हैं, तो ये बताओ दाढ़ी कटा के नहीं कर सकते? दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हो? आसपास के लोगों को देख करके परिवर्तित हो रहे हो ना? पहले तो नहीं दाढ़ी बढ़ रही थी ना, भक्तों के संग में तो एकदम क्लीन शेवन रहते थे ना, महाप्रभु को दाढ़ी पसंद नहीं है, एकदम स्पष्ट पढ़ेंगे तो आप देख लीजिए। सनातन गोस्वामी को भी नहीं छोड़ा, वो तो शुद्ध भक्त है ना, कुछ बोले नहीं लेकिन देख रहे थे, नहीं बोले छोड़ कर आयो सफाई कराओ। पुरुषों के लिए बोल रहे थे, मतलब स्वाभाविक सी बात है। तो भगवान को वेशभूषा का बहुत ध्यान रखते हैं, भगवान भक्त के वेश का बहुत सम्मान करते हैं। बाकी देखिए बाहर के लोग कैसे भी कुछ पहने या ना पहने उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भक्तों को वेशभूषा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कपड़ा पहन के भजन हो जाता है। इसीलिए हमारे जूम पे एक व्यक्ति, मतलब क्या कहते हो क्या बरमूडा कहते हैं, बरमूडा पहन के आगे भजन कर रहे हैं। उन्हें कह रहे भाई कुछ शर्म करो, कम से कम कुर्ता पजामा तो पहन के आओ। वो शर्मा गए, तुरंत पहन करके आए। कच्छा पहन के भजन नहीं होता है, बरमूडा पहन के आगे अरे किस्ता। अरे कोई तरीका कुछ होता है ना, हर जगह प्रोटोकॉल होता है ना, धोती कुर्ता पहन के भजन ही होता है, तरीके से भजन करो भाई, इतना तो होना चाहिए आचरण। कृष्ण सुखी होते हैं। महाराज बता रहे थे कि पूतना केवल भगवान के भक्त का ड्रेस पहन के आ गई, तो भगवान ने कहा ड्रेस पहना तो भक्त बना ही देते हैं उसको। अगर पूतना जीन्स पैंट पहन के आई थी तो ब्रज में तो संदेह है कि कृष्ण के पास क्या जाती, वही समझ जाते कि कोई ठीक नहीं है। तो भगवान के सामने जींस पैंट पहन के नहीं जाना चाहिए। खैर ये तो थोड़ी विनोद की बात थी, बात ये था कि अपने शरीर का मार्जन भी उसी लिए करती है ताकि कृष्ण को सुख प्राप्त हो। निजांगम अपिया गोपियो ममेति समुपासते ताभ्या परम नमे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। इसको वह श्लोक से स्पष्ट कर रहे हैं। हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं है। वे अपने शरीरों को स्वच्छ करती हैं तथा सजाती हैं क्योंकि वे उन्हें मेरा समझती हैं। वैसे कुछ हद तक भक्त भी इसी प्रकार की भावना से युक्त रहते हैं। वह हम लोग भी स्नान करते हैं, तिलक लगाते हैं कि भगवान के सामने जाना है, ठीक है ना, ऐसे ही मुंह उठाए और मुंह से थूक बह रही और पहुंच गया मंगल आरती में, ऐसा नहीं होता है। जब मैं जूम के डिवोटीज को बोलता हूँ कि आप मंगल आरती आइए, तो अज्यूम्ड है कि आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप स्नान करके आएंगे। भगवान लैपटॉप से भी देखते हैं आपको, ये मत सोचिएगा कि मंदिर से ही देखते हैं। ऐसे आ जाओ बस मुंह उठाकर, ब्रश भी नहीं किया है आगे मंगल आरती में। मंगल आरती प्रेजेंट मतलब स्नान करके प्रेजेंट। आर एक अद्भुत गोपी भावे र स्वभाव बुद्धि र गोचर न है जहार प्रभाव। और इसके साथ ही गोपियों का एक अद्भुत स्वभाव है जो बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता। ये बड़ी सुंदर डिस्कशन आने वाला, देखिए। गोपी गण करे जबे कृष्ण दर्शन सुख वांचन ही सुख है कोटि गुण। गोपी गण जब कृष्ण का दर्शन करती हैं तो उनकी सुख की इच्छा नहीं होती है, लेकिन सुख उनका कोटि गुणा हो जाता है। ये सारी बातें क्यों हो रही है? श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के मधुरता का अनुभव करने के द्वारा क्या सुख प्राप्त होता है, यह कृष्ण जानना चाहते थे, इसलिए अभी सब डिस्कशन में आ रहा है।
इससे पहले क्या बातें हुई कि गोपियां अपने सुख की इच्छा बिल्कुल नहीं करती हैं, ये सारे पिछले श्लोकों से समझ में आ रहा था, वह केवल कृष्ण के सुख का विधान ही करती हैं। अब बात आ रहा है कि कृष्ण का दर्शन करके उन्हें सुख क्या मिलता है और किस प्रकार का मिलता है और क्यों मिलता है, और ये बातें बुद्धि के द्वारा समझ में नहीं आती। गोपिका दर्शन कृष्णेर ये आनंद है, तहां है ती कोटि गुण गोपी आस्वादय। इसका अर्थ क्या बता रहे हैं? गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को प्राप्त होता है। गोपी मतलब भगवान श्रीमती राधा रानी पे ही घटित होगा। तसबार नाही निज सुख अनुरोध, तथापि बड़ाए सुख पड़ी ल विरोध। उनके अंदर किसी के अंदर अपने सुख का अनुरोध बिल्कुल नहीं, वो अपना सुख नहीं चाहती हैं, फिर भी उनमें सुख बढ़ता है, ये बड़ी विरोधास्पद बात है। भाई यहां पे हम सुख चाहते हैं, कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो हम सुखी मानते हैं अपने आप को। अद्भुत बात यह है कि गोपियां अपना सुख बिल्कुल नहीं चाहती हैं लेकिन उनका सुख बढ़ता जाता है, ये भी एक अद्भुत बात है। ए विरोधेर एकमात्र देखी समाधान, गोपिका रस सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। इस विरोध का एकमात्र यही समाधान देखा जाता है कि गोपियों का सुख कृष्ण के सुख के में पर्यवसित होता है। गोपियों का सुख कृष्ण के सुख में है, यह बात समझना चाहिए। गोपिका दर्शन कृष्णेर बाढ़े प्रफुल्लता, से माधुर्य बाढ़े जार नाही कसमता। गोपियों का दर्शन करने में कृष्ण के प्रफुल्लता बढ़ जाती है और उनकी अद्वितीय माधुरी भी बढ़ जाती है। कृष्ण गोपियों को देखते हैं, कृष्ण बड़े सुखी होते हैं और गोपियां इसीलिए अपने को सुंदर रूप से सजाती हैं, अभी आपने सुना था, और उनको देखकर कृष्ण बहुत अधिक सुखी हो जाते हैं, फिर उस कारण से उनका मधुरता और बढ़ जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। आमारा दर्शन कृष्ण पाइल एता सुख, ए सुख है गोपीर प्रफुल्ल अंग मुख। आमारा दर्शन है, मेरे दर्शन के द्वारा कृष्ण को बहुत सुख हुआ, यह सुख गोपियों को और प्रफुल्लित कर देता है और उनके अंग को और प्रफुल्लित कर देता है और सुंदर देखने लगती है। गोपी शोभा देखी कृष्णेर शोभा बाड़े जाता, कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा बाड़े तता। स्पष्ट है, गोपियों की शोभा को देख करके कृष्ण की शोभा और बढ़ जाती है और कृष्ण की शोभा देख कर गोपियों की शोभा और बढ़ जाती है। आपको याद है रहा, राधा कृष्ण श्री राधा कृष्ण के बीच में भी हो रहा है, होड़ चल रही है। ए मत परस्पर पड़े हुडा होड़ी परस्पर बाढ़े के हर मुखे नाही मुड़ी। कह रहे दोनों के बीच में होड़ चल रही, होड़ समझते कंपटीशन चल रहा है, परस्पर बाढ़े दोनों बढ़ रहे हैं कि हम मुखे नाही मुड़ी, और कोई नीचे मुख नहीं मुड़ रहा है कि हम हार मान लेंगे। ठीक है, गोपियों को देख के कृष्ण अधिक सुखी होते हैं, कृष्ण को सुख देख करके गोपियां और सुंदर हो जाती हैं, तो कृष्ण और सुंदर हो जाते हैं, इस प्रकार से। तो अब ऐसे आध्यात्मिक जगत में जाने वाले हो जहां कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट। किंतु कृष्णेर सुख होए गोपी रूप गुणे, तहां सुखे सुख वृद्धि होए गोपी गणे। इसका अर्थ क्या है? किंतु कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं और जब गोपियां उनके आनंद को देखती हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है। ये बात बोल रहे हैं, वो एक दूसरे को देख करके उनका सुख की वृद्धि होती है। आते से सुख कृष्ण सुख पोषे, ए हेतु गोपी प्रेम नाही काम दोषे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है, इस कारण से गोपियों के प्रेम में काम दोष नहीं पाया जाता। काम दोष क्या था? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, अपने इंद्रिय प्रीतों की प्रीति की इच्छा गोपियों में बिल्कुल नहीं है, कृष्ण के इंद्रिय प्रीति की वांछा प्रेम हो कही जाती है। हम देख रहे हैं कि गोपियों जो कुछ भी कार्य कर रही हैं, चाहे वे अपने शरीर को सुंदर सजा रही हो, मार्जन कर रही हो, उसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण को सुखी करना, तो वह प्रेम ही है, उसमें काम की गंध भी नहीं है, ये बात बोल रहा है। श्लोक बोलना मुझे में कठिन हो जाता है। इत पति सुंदरी उपेत पति सुंदरी तत भीर आभीर अभ्यर्चितम स्मितांकुर करिब करिंब तैर नटत अपांग भंगी शतही स्तन स्तवक संचरन नयन चंचिका चंचरिकांचलम व्रजे विजयनम भजे विपिन देशतः केशवम। अनुवाद पढ़ लेता हूँ। हे भगवान, सॉरी, मैं भगवान केशव की पूजा करता हूँ। कृष्ण के व्रज के वन से लौटते समय गोपियां अपने महलों पर की छतों पर चढ़ जाती और सैकड़ों प्रकार की तिरछी चितवनों तथा मंद मुस्कानों द्वारा मार्ग में उनसे मिलकर उनकी पूजा करती। उनके दोनों नेत्र विशाल काले भौरे के समान गोपियों के स्तनों पर विचरण करते रहते थे। तो कहने करते हैं कि कृष्ण गोपियों को देखकर सुखी होते और गोपियां कृष्ण को देखकर सुखी होती। तो उसमें काम गंध बिल्कुल भी नहीं। और एक गोपी प्रेमेर स्वाभाविक चिन्ह ये प्रकार है प्रेम काम गंधहीन। और गोपियों के प्रेम का एक स्वाभाविक चिन्ह है कि जो और वो यह है, वो जो दिखाता है कि उसमें लेश मात्र भी काम वासना नहीं है। गोपी प्रेम करे कृष्ण माधुर्य पुष्टि माधुर्य बढ़ाए प्रेम होय महातुष्टि। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य का पोषण करता है। आपको याद है ना, कृष्ण को मधुर देख करके, कृष्ण की मधुरता को देख करके गोपियां बहुत खुश हो जाती हैं। फिर उनको सुख देख करके कृष्ण और मधुर हो जाते हैं। इस प्रकार से उनको पुष्ट करता है। बदले में यह माधुर उनके प्रेम को वर्धित करता है क्योंकि वे अत्यधिक तुष्ट हो जाती हैं। समझ में आ रहा है? तो बात अब रिपीट सी हो रही है, ठीक है। प्रीति विषय आनंदे तद आश्रय आनंद तहा ना ही निज सुख वांछा र संबंध। प्रेम के आश्रय का सुख उस प्रेम के विषय के सुख में है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? प्रेम के विषय कौन है? भगवान कृष्ण। प्रेम के आश्रय कौन है? गोपियां। तो उनका सुख क्या है? कृष्ण के सुख में है, इसलिए उनका इसमें निज सुख का संबंध बिल्कुल भी नहीं है। वे अपने सुख की इच्छा बिल्कुल नहीं करती हैं। अच्छा, निरुपाधि प्रेम जहां तहां ए रीति प्रीति विषय सुख आश्रेर प्रीति निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे सियानंदेर प्रति भक्तिर होय महाक्रोधे। बहुत ही गंभीर बात है। निरपाधि प्रेम जहां तहां यही रीति, जिसका ये निस्वार्थ प्रेम होता है भगवान के प्रति, उसकी ऐसी रीति ही होती, उसका ऐसा स्वभाव ही होता है इस प्रेम का कि प्रीति विषय सुख आश्रेर प्रीति, विषय सुख जो प्रीति का विषय है, जो प्रेम के विषय कृष्ण है, उनके सुख में ही आश्रय की प्रीति होती है। प्रेम का आश्रय कौन है? भगवान का भक्त। प्रेम के विषय कौन है? भगवान। तो भगवान के सुख में ही भक्त जो प्रेम का आश्रय, उसके सुख होता है। अब इतना होता है इसमें कि निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे। अगर उनका खुद का प्रेमानंद कृष्ण की सेवा के आनंद में बाधा देता है तो उस आनंद के प्रति भक्त का महाक्रोध होता है। समझ रहे हैं? कृष्ण की सेवा में यदि मेरे प्रेम के विकार बाधा दे रहे हैं तो उस प्रेम के विकार के प्रति भक्त का क्रोध होता है। आप देख रहे हैं कितनी उत्कृष्टता है प्रेम की। वह स्वयं के सुख की इच्छा ही नहीं करते। हम लोग तो सोचते हैं हमें जब में कब स्फूर्ति हो, अच्छा लगे, ये इत्यादि। यहां बोल रहे हैं कि नहीं, प्रेमानंद से जो सुख मिल रहा है वह भी अगर कृष्ण की सेवा में बाधा डाल रहा है तो उसकी भी भर्त्सना भक्त करता है। इतने सेल्फलेस है वो, इतने निस्वार्थ है वास्तविक प्रेम। इतना आसान वस्तु नहीं है प्रेम को प्राप्त करना। इसको वो यहाँ पे वह श्लोक से कोट कर रहे हैं, ये द्वारका क्या नाम, द्वारका के संबंध में। अंगस्थम बारमुत्तुंगयंतम प्रेमानंदम दारको नाभ्यनंदत कंसारतेर वीजने ये न साक्षात अक्षोदियान अंतरायो व्यधायी। श्री दारुक ने अपने प्रेम भाव का आस्वादन नहीं किया क्योंकि इससे उनके अंग स्तंभित हो गए, जिसके कारण भगवान कृष्ण पर उसका पंखा जलना बाधित हुआ। समझ में आया? दारुक भगवान कृष्ण को पंखा जल रहे हैं और जलते जलते प्रेम उत्पन्न हो रहा है। अब उनका हाथ स्तंभित हो रहा है तो गुस्सा हो रहा है, मेरा हाथ क्यों स्तंभित हो रहा है, मैं कृष्ण की सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। समझ रहे ना? ठीक है, मतलब अपने सुख की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। गोविंद प्रेक्षणाक्षेपी वाष्प पूराभिवर्षिणम उच्चैर अनिंद आनंदम अरविंद विलोचना। तो दूसरा यहां पे है, कहां गायब हो गए, आगे बढ़ गए मैं। 203 कमल नयनी राधा रानी ने उस प्रेमानंद की भर्सना की जिसके कारण अश्रु बहने लगे और जिससे उन्हें गोविंद का दर्शन पाने में बाधा हुई। यहाँ पे कभी भगवान के सामने दो चार आंसू आ गए तो लगता हा देख तो नहीं रहा है कि मेरे कितने आंसू बह रहे हैं। नयने जमुना जरे अनिबार, तुरंत आप बोला चालू कर देगा अब तो मैं भक्त बन गया, कृष्ण को देखकर मैं रो रहा हूं। लेकिन यहाँ पे राधा रानी क्या कह रही हैं, इन अश्रुओं की वजह से मैं कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। तो ये आप समझ रहे होंगे मूल बात सब कहने की ये है कि वे अपने सुख के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं ये बात है। और शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा विने स्वसुखार्थ सालो क्या दी न करे ग्रहण। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आएगी। शुद्ध भक्त कृष्ण की सेवा के बिना अपने सुख के अर्थ के लिए सालोक आदि भी ग्रहण नहीं करते, वह मुक्ति की इच्छा नहीं करते, केवल कृष्ण की सेवा की इच्छा करते हैं। अब इसकी व्याख्या भगवान कर रहे हैं, मदगुणा श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय मनोगतिर अवच्छिन्ना यथा गंगाम्भ सोम्भुदाओ। कह रहे मेरे गुण मदगुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों को सुनने मात्र से मई सर्व गुहाशय, मैं जो सबके हृदय में रहने वाला हूं उनमें मेरे मनोगतिर अविच्छिन्न, अविच्छिन्न मतलब कटी नहीं रहती, बिना कटी मन की गति लगातार भगवान जो हृदय में रहने वाले उनकी तरफ जाती है। कैसे? केवल गुणों को सुनने मात्र से। यथा गंगा अम्भसौ अम्बुधौ, जैसे गंगा जी सारी बाधाओं के बावजूद सागर में निरंतर बहती ही रहती, इस प्रकार से कहने का मतलब है ये भक्त की, शुद्ध भक्त की स्थिति है कि उसका सदा ही मन उसका भगवान में लगा रहता है और यह उसके प्रेम के लक्षण है। आज हम पूरा अध्याय पूरा ही करेंगे, आज घड़ी मत देखिएगा। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। तो मैं उस भक्ति योग का लक्षण को बताऊंगा जिसको निर्गुण कहा जाता है, वह अहेतुकी होता है, वह भगवान का भजन किसी भौतिक उद्देश्य से नहीं करता है, अव्यवहित होता है, इसमें कोई भौतिक बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं आती है। किसकी भक्ति? पुरुषोत्तम। ये सब भगवान कपिलदेव की शिक्षाओं से लिया गया है। सालोक्य सार्ष्टि सारूप्या सामिप्यैकत्वमप्यद दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनः। तो अपने भक्तों की महिमा बताने के लिए कह रहे हैं सालोक्य मेरे लोक को प्राप्त होना, सार्ष्टि मेरे ऐश्वर्य मेरे समान ऐश्वर्य प्राप्त होना, सारूप्य मेरे समान रूप प्राप्त होना, सामिप्य मेरे निकट आना या एकत्व ब्रह्म ज्योति में मिल जाना। तो इस प्रकार के पांच मुक्तियों को भी दीयमानम न गृह्णन्ति, भगवान कहते हैं अगर मैं देता भी हूं तो भी भक्त स्वीकार नहीं करता है, बिना मत सेवनम जने, यदि उनको सेवा प्राप्त नहीं होती। कहने का अर्थ ये है कि इस जगत से दुखों की निवृत्ति के लिए वह इन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते। हाँ, अगर भगवान की सेवा प्राप्त होती है तो वह जरूर स्वीकार करते हैं, लेकिन एकत्व को तो स्वीकार करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, ब्रह्म ज्योति में जाकर भगवान की सेवा मिलती ही नहीं, तो उसको तो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करते। भगवान अगर मुक्ति दें तो भी भक्त स्वीकार नहीं करते हैं, तो इससे भक्तों की उत्कृष्टता समझ में आती है। मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोऽन्यत् काल विप्रतम। इसका अर्थ क्या है? मेरा भक्त मेरी सेवा द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद ऐसी सेवा के सहज प्राप्य चार प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते, तो फिर वे काल के प्रभाव के साथ नष्ट होने वाली किसी आनंद को स्वीकार क्यों करने लगे। ये श्लोक नवे स्कंद से लिया गया है जिसमें अमरीश महाराज के बारे में भगवान विष्णु कह रहे हैं कि भगवान की सेवा प्राप्त करके सेवा करके भक्तों को इतना सुख होता है कि वे मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। तो ये सब शुद्ध भक्तों को और शुद्ध भक्ति के महान गुणों को वर्णन करता है। अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते, काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेमा निर्मल उज्ज्वल शुद्ध ये न दग्ध हेमा। काम के गंध से हीन है यह स्वाभाविक गोपियों का प्रेम होता है, ये निर्मल है, इसमें कोई मल नहीं है, अपने सुख की वांछा बिल्कुल नहीं, उज्ज्वल है एकदम। उज्ज्वल मतलब उज्ज्वल का क्या होता है? एकदम प्रकाश माना एकदम। और शुद्ध ये ना दग्ध हेम, जैसे पिघला हुआ सोने में सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, उसमें गंदगी रह नहीं सकती, उस प्रकार से उनका प्रेम है।
कृष्ण सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका ये न प्रिया शिष्य सखी दासी। अब यह कह रहे हैं किस प्रकार से गोपियां कृष्ण की विभिन्न प्रकार से सेवा करती हैं। वो उनकी सहायिका हैं, गुरु हैं कृष्ण की गुरु, मित्र हैं, पत्नियां हैं, प्रिय हैं, शिष्य हैं, विश्वास पात्रा हैं तथा दासियां, ये सारी कृष्ण की हैं। आगे पढ़ते हैं, सहाय गुरु वह शिष्य भुजिष्य बांधव स्त्रिय सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किं मे भवन्ति नः। हे पार्थ, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, गोपियां मेरी सहायिका हैं, गुरु शिष्य सेविकाएं मित्र तथा प्रेयसी हैं, मैं नहीं जानता कि वे मेरे लिए क्या हैं। ये गोपी प्रेमामृत में कह रहे हैं। अब मैं रुकने का तो कोई प्रयोजन होता नहीं है, पूरा करके ही रुकेंगे। गोपिका जाने न कृष्णेर मने रवांचेत प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समहित। गोपियां कृष्ण की इच्छाओं को जानती हैं। गोपिका जाने कृष्णेर मने रवांचेत प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समहित। वो जानती हैं कि उनके आनंद के लिए किस प्रकार प्रेममयी सेवा पूर्ण रूप से कर ली जानी चाहिए और वह अपने इष्ट यानी कि अपने कृष्ण की सेवा को उन सेवा को दक्षता पूर्वक करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं। मन महातम मत समर सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानंती गोपिकः पार्थान नान्य जानंती तत्पतः। मेरे महात्म्य को, मेरी प्रेममयी सेवा को, मेरे सम्मान तथा मेरी मनोभावना को गोपियां जानती हैं। ये पार्थ वस्तुतः अन्य उन्हें कोई नहीं जान सकता है। आप समझ रहे हैं सब गोपियों के प्रेम की महानता को यहाँ पे वर्णित किया जा रहा है। से गोपी गणे मध्य उत्तम राधिका रूप गणे सौभाग्य प्रेम सर्वाधिका। आप समझ में आया गोपियों का प्रेम क्यों वर्णित कर रहे थे कि श्रीमती राधा रानी उन सब में सर्वश्रेष्ठ हैं। से गोपी गण मध्य उत्तम राधिका, सारी गोपियों गणों के मध्य में श्रीमती राधा रानी उत्तम है, रूप में, गुण में, सौभाग्य में और प्रेम में सर्वाधिक है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्यः कुण्डं प्रियं तथा सर्वगोपीषु सेवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी भगवान विष्णु को, कृष्ण को प्रिय हैं, उसी प्रकार से उनका कुंड भी उनको बहुत प्रिय है। सर्वगोपीषु, वे अकेले ही समस्त गोपियों में सबसे अधिक भगवान कृष्ण को प्रिय हैं। त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरीम तत्रापि गोपिकः पार्थ यत्र राधा विदा ममा। तीनों लोकों में पृथ्वी धन्य है, क्यों धन्य है? यत्र वृंदावनम पुरीम, क्योंकि वहां पे वृंदावन पुरी है, वृंदावन वहां पे स्थान है जहां पे हम बैठे हुए हैं अभी। तत्रापि गोपिका पार्थ, और वृंदावन में भी गोपियां विशेष रूप से महिमा मंडित हैं क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी उनमें से है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये आदि पुराण से लिया गया है। तो यहाँ बता रहे हैं श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं। राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धि कारण और सब गोपी गण रसोपकरण। सारी अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली हैं और गोपियां उनके पारस्परिक सुख के उपकरण का कार्य करती हैं। तो मुख्य रूप से अगर कृष्ण श्रीमती राधा रानी नहीं हो तो गोपियां रासलीला में कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है। कृष्णेर वल्लभ राधा कृष्ण प्राण धन तहा बिना सुख हेतु तहा बिना सुख हेतु न है गोपीगण। कृष्ण की वल्लभा, कृष्ण को सुख देने वाली हैं श्रीमती राधा रानी, कृष्ण की प्राण धन है, उनके बिना सुख हेतु नहीं गोपीगण, उनके बिना गोपीगण कृष्ण को सुख नहीं दे सकती हैं। कंसारीर अपि संसार वासनाबद्ध श्रृंखलाम राधामाधाय हृदय तत्याज व्रज सुंदरी। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य सारी गोपियों को एक ओर छोड़ दिया और श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में स्थापित किया क्योंकि वे भगवान की इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायिका है। मतलब सारी गोपियों के होने के बाद भी श्रीमती राधा रानी के बिना कृष्ण को सुख प्राप्त नहीं होता है। तो श्रीमती राधा रानी की वैशिष्ट को, विशिष्टता को यह समझा रहे हैं। थक गए आप लोग, थकते रहिए, कोई बात नहीं, कोई दया नहीं करी जाएगी, पूरा करने के बाद ही सुना है तो खत्म किया जाएगा। अरे मैं जैसे हवाई जहाज में बैठा था, वहां 3 घंटे की हवाई जहाज की फ्लाइट में कितना बोर होते हैं, वहां तो कोई कथा भी नहीं सुनाता है। ठीक, समझ लीजिए कि हवाई जहाज में बैठे हुए आप। से राधर भावलैया चैतन्य अवतार युग धर्म नाम प्रेम कैला प्रचार। उन्हीं श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर, केवल कृष्ण के प्रीति विधान को लेकर, कृष्ण के भक्त के भावना को लेकर के चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, युग धर्म का प्रचार किया और प्रेम का प्रचार किया। सेई भावे निज वांछा करिला पूरण अवतार एई वांछा मूल कारण। इस भाव को सही भाव श्रीमती राधारानी के भाव में अपनी खुद की इच्छा को पूर्ण किया। क्या तीने चाहे किसी को याद रही, इतनी सारी व्याख्या की हम लोगों ने श्रीमती राधारानी के प्रेम की महिमा क्या है, मेरी वह भगवान कृष्ण की क्या मधुरता है जिसका जिसको जिसको वो अनुभव करती हैं और उसका अनुभव करके उन्हें क्या सुख प्राप्त होता है। यह तीन इच्छाएं थी अवतारेर एई वांछा मूल कारण, श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का ये मूल कारण था। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई व्रजेंद्र कुमार रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र कुमार है। साक्षात ब्रजेंद्र कुमार कहने का अर्थ है कि वह स्वयं रूप कृष्ण है और वे साक्षात श्रृंगार की मूर्ति है अर्थात श्रृंगार रस के आगार है। सेई रस आस्वादित कैले अवतार अनुसंग कैले सब रसेर प्रचार। तो श्रृंगार रस का आस्वादन करना उनका मुख्य प्रयोजन था और अन्य रसों का भी प्रचार उन्हें किया अर्थात वात्सल्य साख्य और दास्य। आनुषंगिक रूप से मतलब साइड बिजनेस था लेकिन मुख्य प्रयोजन था श्रृंगार रस का आस्वादन करना। विशेषामानुरंजनेन जनयन आनंदम इंदीवर श्रेणी श्यामल कोमलैर उपनयन अंगेर अनंगोत्सवम। हे सखियों जरा देखो ना किस तरह श्री कृष्ण वसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं। उनके प्रत्यंग अंग का आलिंगन गोपियों द्वारा हो रहा है जिससे वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति प्रतीत हो रहे हैं। वे अपने दिव्य लीलाओं में से समस्त गोपियों एवं सारी सृष्टि को सुख प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने कोमल श्याम वर्ण नील कोमल सदृश भुजाओं एवं चरणों से कामदेव के लिए एक उत्सव की सृष्टि करे। मैंने क्या कर दिया? हाँ। ओ आधा श्लोक था ये। स्वच्छंदम व्रज सुंदरी भीर अभितः प्रत्यमंगलांग लिंगितः श्रृंगार सुखी मूर्तिमान इव मधो मुग्ध हीरह हरि क्रीडती। गलत किया जो एडिटर आया सामने, नहीं तो डांट पड़ती उसको। एक श्लोक को आधा में दिखाता है, मैं सोच रहा है क्या अनुवाद कुछ अलग पड़ दिया क्या। उन्होंने अपने कोमल श्याम वर्ण नील कमल सदृश भुजाओं एवं चरणों से कामदेव के लिए एक उत्सव की सृष्टि कर दी है। ये गीत गोविंद से लिया गया है। इसको लेने का उद्देश्य क्या है, यह बताने के लिए कि भगवान कृष्ण श्रृंगार रस के मूर्तिमान स्वरूप हैं, इसलिए ये बात बोल रहे हैं। ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसे रसदन अशेष विशेष कैल रस आस्वादन। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सारे रसों के स्वाद धाम हैं। उन्होंने अशेष विशेष कैल रस आस्वादन। अशेष मतलब अनलिमिटेड असीमित और विशेष मतलब विशेष। उस असीमित विशेष रस का उन्होंने आस्वादन किया श्रृंगार रस का। सेई द्वार प्रवर्ताइल कलियुग धर्म चैतन्य रदासे जाने एई सब मर्म। और उनके द्वारा इस कलियुग के धर्म हरि नाम संकीर्तन धर्म का प्रवर्तन हुआ। उनके महाप्रभु के भक्त इन सब सत्य को जानते हैं। अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास आरयत चैतन्य कृष्णेर भक्त गण भक्ति भाव शिर धरि सबार चरण। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु श्रीनिवास गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास और जितने भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं भक्ति भाव से मैं उनके चरणों को अपने सिर पर धारण करता हूँ। षष्ठ श्लोकेर एक कहिला आभास मूल श्लोकेर अर्थ सुन करिया प्रकाश। इस प्रकार से मैंने छोटे श्लोक के अर्थ का आभास किया है। अब मूल श्लोक के अर्थ का अर्थ को सुनिए। एक मिनट, मुझे लग रहा आज पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। इसको यहाँ ना भाग नहीं सकते। अरे मुझे लगा था पूरा हो गया और मुझे लगा था कि बोलेंगे कि चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास, लेकिन अभी बहुत लंबा है। कहाँ तक है? 277 है। आप लोग बेहोश हो जाएंगे इतने। ठीक है, तो अब मुख्य श्लोक की भी प्रकाशन करेंगे। उसके लिए हम लोग कल करें या कर दें, क्या करें? कल ही करें, कल वाली क्लास तो बहुत जल्दी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो भक्त लोग कह रहे थे कि लिटिल मोर नहीं, अगर लिटिल मोर आगे बढ़ा तो फिर पूरा 77 ही करूंगा। चलिए कर देते हैं। ठीक है, ये वाला तो आप जिसको जैसे अभी फ्री कर दे रहे हैं, जो जो मुक्त होना चाहता है वो मुक्त हो जाए, जो बैठना चाहता है वो करे, आज आप पूरा करके मारेंगे। ठीक है,
ये श्लोक तो आपकी व्याख्या में कर चुका, उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। एक बार बोल दीजिए मेरे साथ, श्री राधाय प्रणय महिमा की दृशो व नय साध्यो ये नाद्भुत मधुरिमा की दृशो व मदीय सौख्यम चास्य मद अनुभवत की दृशम वेति लोभात तद्भावाड्य समजनी शचि गर्भ सिंधौ हरिंदो। इसकी व्याख्या तो हम करते ही आए तो इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। ए सब सिद्धांत गुड़ी कही ते न जुड़ाए न कही लके हार अंत नहीं पाए। अब जैसे सिद्धांत बड़े गुड़ हैं, इनको कहना उचित नहीं है, लेकिन अगर कहूंगा नहीं तो इनका अंत कोई पाएगा नहीं, कोई समझ नहीं पाएगा। अतेव कही किछु करी या निगुड़ बुझीबे रसिक भक्त ना बुझीब मूल। इसलिए मैं कुछ कहूंगा जो बहुत निगुड़ है लेकिन उसको रसिक भक्त समझ पाएंगे, जो मूर्ख है वो नहीं समझ पाएंगे। हृदय धरय ये चैतन्य नित्यानंद एसब सिद्धांत से ही पाई बे आनंद। जिसने हृदय में श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को धारण किया है वह सब इन सिद्धांतों को समझेगा और आनंद पाएगा। ए सब सिद्धांत है आम्र आमरे पल्लव भक्त गण कोकिले सर्वदा वल्लभ। ये सब सिद्धांत जो है आम के पल्लव के समान है। आम का पल्लव, पल्लव मतलब क्या होता है? हाँ, आम के वृक्ष की नवांकुरित शाखाओं के समान है और वह कोयल रूपी भक्तों के लिए सदा प्रिय है। अभक्त उस टेरा इथे न है प्रवेश तबे चित्त होए मोर आनंद विशेष। अभक्त है वह ऊंट की तरह है और ऊंटों का इसमें कोई प्रवेश नहीं है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं, मेरे चित्त में बड़ा आनंद आ रहा है। कोई कठिन चीजें नहीं है, पूरा कर देते हैं। ये लागी कहिते भय से यदि न जाने इहाव की बस सुख आछे त्रिभुवने। इस कारण मैं उनके डर से कहना नहीं चाहता, किंतु यदि वे नहीं समझते तो तीनों लोकों में इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। समझ रहे हैं, भक्त लोग ना समझे इस बात को तो अच्छा ही है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। अतेव भक्त गण करी नमस्कार निशंक कहिए तार हौ का चमत्कार। इसलिए मैं भक्त गणों को नमस्कार कर रहा हूं और निशंक बिना किसी शंका के कह रहा हूं और ये बिना संकोच के यहां पे कहूंगा। ठीक है, कृष्णेर विचार एक आछा अंतरे पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहे मोरे। कृष्ण के अंदर एक विचार हुआ, सारे लोग कहते हैं कि मैं आनंद और रसों का पूर्ण आगार हूं। आमा हईते आनंदित होय त्रिभुवन आमा के आनंद दिवे एछे कौन जन। मेरे द्वारा तो तीनों लोगों को आनंद प्राप्त हो रहा है, तो मुझको कोई आनंद दे सके ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है। आमा हैते जार है शत शत गुणा से जन आहलादिते पारे मोरा मन। जिसका मुझसे सौ सौ गुना अधिक गुण होगा वही व्यक्ति मुझको आहलाद दे पाएगा, ये कृष्ण सोच रहे हैं। ये सब बातें कभी सुनी थी आपने? कुछ लोग सुनना नहीं चाहते इसीलिए छोड़ के चले गए, सुनी भी नहीं है और सुनना भी नहीं चाहते, ये तो बोलते ही रहेंगे अरे हम पढ़ लेंगे अपने आप, इस जन्म में तो नहीं लेकिन अगले जन्म में तो पढ़ ही लेंगे, मुझे पता है यहां से छोड़ दूंगा तो ऐसा तो नहीं है, अरे प्रभु जी ने छोड़ दिया चलो हम पढ़ लेते हैं। कोई पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, आमा है ते गुणी बड़ा जगते असंभव एकली राधा ते तह करी अनुभव। मुझसे बड़ा गुणी, कृष्ण कह रहे हैं मुझसे बड़ा गुणी व्यक्ति तो कोई जगत में है ही नहीं, असंभव है, केवल श्रीमती राधा रानी ऐसा कर सकती है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। कोटि काम जिनी रूप यद्यपि आमार असमूर्ध माधुर साम्य नहीं जार। मोर रूपे आप्यायित है त्रिभुवन राधार दर्शने मोर जुड़ाए नयन। कोटि काम जिनी रूप यद्यपि आमार, मेरा रूप करोड़ों करोड़ों काम देवों को भी जीतने वाला है। असमूर्ध माधुर्य, उसके समान माधुरता किसी की नहीं है, साम्य नहीं यार, भगवान कृष्ण के समान कह रहे हैं कि मेरी सुंदरता के समान किसी की सुंदरता नहीं है। मोर रूपे आप्यायित है त्रिभुवन, मेरे रूप को देखने के लिए तीनों लोग आप्यायित हैं, आनंदित होने वाले हैं, आनंदित करने वाला है। किंतु राधार दर्शन मोर जुड़ाई नयन, श्रीमती राधा रानी के दर्शन को करके मेरे नेत्र आनंदित होते हैं। मोर वंशी गीते आकर्ष त्रिभुवन राधार वचने हरे आमार श्रवण। मेरे वंशी के गीत से तीनों लोक आकर्षित होते हैं लेकिन श्रीमती राधा रानी के वचन से मेरा श्रवण आकर्षित होता है, मेरा श्रवण हरे मतलब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। यद्यपि अमार गंधे जगत सुगंध मोरा चित्त प्राण हरे राधा अंग गंध शिम, यद्यपि मेरे गंध से पूरा जगत सुगंधित होता है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे चित्त प्राण को श्रीमती राधा रानी का अंग गंध हर लेता है, आकर्षित कर लेता है। यद्यपि अमार रस जगत सरस राधार अधर रस आमा करे वश, यद्यपि मेरे रस से पूरा जगत रस युक्त होता है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के रस से मैं उनके वश में रहता हूँ। यद्यपि अमार स्पर्श कोटि इंदु शीतल राधिका स्पर्श आमा करे सुशीतल, यद्यपि मेरे स्पर्श को मेरा जो स्पर्श है वह कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के स्पर्श से मैं अपने को सुशीतल मानता हूं। तो ये बड़ी अद्भुत बातें हैं, भगवान कृष्ण चकित हो रहे हैं। एई मत जगतेर सुखे आमी हेतु राधिकार रूप गुण आमारा जीवातु, इसका अर्थ क्या है? यद्यपि संपूर्ण सृष्टि नहीं, यहां पर नहीं, इस तरह यद्यपि मैं संपूर्ण जगत के सुख का उद्गम हूं, किंतु श्री राधिका के सौंदर्य एवं गुण मेरे जीवन और आत्मा है। एई मत अनुभव अमार प्रतीता विचारी देखिया यदि सब विपरीत, श्रीमती राधारानी के प्रति मेरी स्नेहल भावनाओं को इस रूप में समझा जा सकता है, किंतु जब मैं विचार करके देखता हूं तो मैं उन्हें विपरीत पाता हूं। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं, राधार दर्शन मोरा जुड़ाए नयन आमार दर्शन राधा सुखे अगेयान, कह रहे हैं कि जब मैं राधा रानी को देखता हूं तो मैं बड़ा तुष्ट होता हूं, मेरी आंखें बड़े खुश हो जाती हैं, लेकिन वो मुझे देखकर और भी संतुष्ट हो जाती हैं। परस्पर वेणु गीते हर ये चेतन मोर भ्रमे तमाले र करे आलिंगन, कह रही हैं कि जब बांस आपस में रगड़ करते हैं, बांसों का झुंड होता है, रगड़ करते हैं तो वो सोचती हैं कि वह कृष्ण के वंशी की ध्वनि है, वो इतना मुझसे प्रेम करती हैं, और तमाल के वृक्ष को आलिंगन करके सोचती हैं कि मैं कृष्ण का आलिंगन कर रही हूं, इस प्रकार से उनका प्रेम है भगवान के प्रति। कृष्ण आलिंगन पाइनो जन्म सफले कृष्ण सुखे मग्न करहे वृक्ष करी कोले, तो कह रहे हैं कृष्ण का आलिंगन पाकर के मेरा जन्म सफल हो गया, कौन सोच रही है? श्रीमती राधा ने किसका आलिंगन किया? तमाल का। यहां कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उनसे द्वारा आकर्षित हो रहा हूं, और अद्भुत बात है कि वो मेरे प्रति इतना आकर्षित हो रही हैं। कृष्ण सुखे मग्न रहे, कृष्ण के सुख में मग्न होकर के, और वृक्ष को कोले मतलब वृक्ष का आलिंगन करके वह कृष्ण के सुख में मग्न रहती हैं, इस प्रकार की इनकी स्थिति रहती है। अनुकूल वाते यदि पाए मोर गंध उड़िया पड़ीते चाहे प्रेम होए अंध, अगर किसी अनुकूल वात से अनुकूल हवा से मेरे गंध को प्राप्त करती श्रीमती राधा रानी तो उनकी इच्छा होती कि उड़ करके मेरे पास चली जाए, प्रेम के कारण उस प्रकार से मतलब एक प्रकार से अंधी हो जाती हैं। तांबुल चर्वित जबे करे आस्वादने आनंद समुद्र डूबे किछु न जाने, अगर मेरा चर्वित तांबल कृष्ण कह रहे हैं अगर उसका आस्वादन करती हैं तो आनंद के समुद्र में डूब जाती हैं और कुछ नहीं जानती हैं। आमार संग में राधा पाए ये आनंद शतमुख बोली तब ना पाई तार अंत, मेरे संग में कृष्ण कह रहे हैं उनके संग में राधा रानी जो सुख प्राप्त करती हैं आनंद प्राप्त करती हैं अगर 100 मुख से भी बोला जाए तो उसका अंत नहीं पाया जाएगा। लीला अंते सुख इहार अंगे रे माधुरी तहां देखी सुखे आमी आपना पाशारी, लीला के अंत के सुख के कारण जो उनके अंग की माधुरी होती है उसको देख करके जो सुख मुझे मिलता है आपना पाशरी, आपनी पाशरी का अर्थ क्या है? हाँ, अपनी परस्पर लीलाओं के अंत में उसके वर्ण की कांति को देखकर मैं सुख में मग्न होकर अपने खुद की पहचान भूल जाता हूँ, कृष्ण भूल जाते हैं कि वह है कौन। दुहारा ये समरस भरत मुनि माने आमार ब्रज रस से नहीं जाने, एक भरत मुनि नाम के व्यक्ति हुए कहते हैं कि कोई भी प्रेम का आदान प्रदान होता है स्त्री पुरुष में दोनों को बराबर रूप से सुख मिलता है, लेकिन वह वृंदावन के रस को नहीं जानते। अन्य रसंग में आमे यत सुख पाई आहा है ते राधा सुख शत अधिकाई, मुझे राधा रानी से मिलने पर जो सुख प्राप्त होता है वह अन्यों से मिलने पर प्राप्त होने वाले सुखों से सैकड़ों गुना अधिक होता है, कृष्ण ये कह रहे हैं राधा रानी का संग मिलने से। अब इसके बाद वह है एक श्लोक को चालू हो जाइए 1.1.1
निर्धूतामृत माधुरी परिमल कल्याणी बिम्बाधरु वक्त्रं पंकज सौरभम कुहरित श्लाघाभिदस्ते गिरः अंगम चंदन शीतलम तनुरियम सौंदर्य सर्वस्व भाग पामासाद्य ममेदमिन्द्रिय कुलम राधे मुहुर्मोदते।
ओके एक और ऐसे इसके अगला वाला भी होगा इसका अर्थ पढ़ लेता हूँ। हे कल्याणी राधा रानी तुम्हारा शरीर अत्यंत सुंदर का स्रोत है। तुम्हारे लाल लाल अधर अमृत माधुरी की अनुभूति से भी कोमल है। तुम्हारे मुख कमल के फूल की सुगंधि से ओतप्रोत हैं। तुम्हारी मधुर वाणी कोयल की ध्वनि को परास्त करने वाली है और तुम्हारे अंग प्रत्यंग चंदन लेप से भी शीतल हैं। मेरी सभी दिव्य इंद्रियां सद्गुणों से अलंकृत तुम्हारा आस्वादन करके परम आह्लादित होती हैं। इस श्लोक क्यों कोट किया गया है? ये बताने के लिए कि कृष्ण को श्रीमती राधा रानी का संग करके बहुत सुख प्राप्त होता है। घबराइए मत, 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। अगला वाला भी उसी तरह से
रूपे कंस हरस्य लुब्ध नयनाम स्पर्शे तिहरे शत्वचम वाण्याम उत्कलितिम श्रुतिम परिमले संहृष्ट नासापुटाम आरज्जद रस नाम किला धर पुटे न्यंचन मुखाम बोरुहाम दंभोद्गीर्ण महाधृतिम बहिरपि प्रोद्यद विकाराकुलाम।
इसको अर्थ पढ़ लेता हूं उसके बाद सब बहुत फास्ट है। उनकी आंखें कंस के शत्रु भगवान कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हैं। किसकी आंखें? राधा रानी की। उनका शरीर कृष्ण के स्पर्श से आनंद पुलकित होता है। उनके कान सदैव उनकी मधुर ध्वनि की ओर आकृष्ट होते हैं। उनकी नाक उनकी सुगंध से मुग्ध होती है। उनकी जीभ उनके कोमल अधरों का अमृत पान करने के लिए ललायत रहती है। वे आत्म संयम का बहाना करके अपने कमल सदृश मुख को लटकाए रहती हैं, किंतु वे कृष्ण के प्रति उनके स्वयं स्फूर्त रागानुग प्रेम के बाह्य लक्षण को प्रकट होने से रोक नहीं सकती। यहाँ क्या कहना चाहते हैं? जितना कृष्ण को सुख मिलता है राधा रानी को देख कर, उससे कहीं अधिक सुख मिलता है श्रीमती राधा रानी को कृष्ण का संग प्राप्त करके। ठीक।
ताते जाने मोते आछे को न एक रस आमारा मोहिनी राधा तारे करे वश।
यह विचार करने पर मैं समझ सकता हूं कि मुझ में कोई अज्ञात रस है जो मुझे मोहित करने वाली राधा करने वाली श्रीमती राधा रानी को संपूर्ण रूप से वश में करता है। तो वही बोले इतना आस्वाद इना मधुरिमा, मेरी क्या मधुरिमा है जिसको जिसके कारण श्रीमती राधा रानी इतनी आकर्षित रहती है।
आमा हते राधा पाए ये जाति या सुख तहां आस्वादिते आमाय सदाई अनमुख।
जो मुझको जिस सुख का आस्वादन मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता हूं जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती है। वही बात है, उसको थोड़ा अलग तरह से समझा रहे हैं।
नाना यत्न करियामी नारी आस्वादिते से सुख माधुर घ्राणे लोभ बाढ़ चित्ते।
मैं बहुत प्रयास करने के बाद भी उस सुख का आस्वादन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जब मैं उसकी मधुरता को सूंघता हूं, मतलब उस सुख की मधुरता के सुनता हूं, तो उस सुख का आस्वादन करने की इच्छा बढ़ जाती है। किस सुख का? जो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के को देख करके स्पर्श करके अनुभव करती हैं।
रस आस्वादित आमी कैला अवतार प्रेम रस आस्वादिल विविध प्रकार।
तो भगवान कह रहे हैं कि उस रस का आस्वादन करने के लिए मैं अवतारित होता हूं और प्रेम रस का आस्वादन विभिन्न प्रकार से करता हूं।
राग मार्गे भक्त भक्ति करे ये प्रकारे तखाश तहा शिखाई लीला आचरण द्वारे।
मैंने भक्तों को रागानुग प्रेम से प्रकट होने वाली भक्ति की शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके प्रदान करी। कौन? कृष्ण के रूप में। ठीक है।
एति न तृष्णा मोर नहि लपूरण विजातीय भावे नहि तहा आस्वादन।
किंतु ये मेरी तीन इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। कौन सी तीन इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई? राधा रानी के भाव की महिमा क्या है, मेरी मधुरता क्या है कृष्ण सोच रहे हैं, और उस मधुरता का आस्वादन करके राधा रानी को क्या सुख मिलता है ये नहीं समझ पा रहे हैं। राधिकार भाव कांति अंगीकार बिने से न सुख कभू नहीं आस्वादन। किसने प्रश्न किया था ना श्रीमती राधा रानी के और भाव की को क्यों स्वीकार किया, कांति को क्यों स्वीकार किया, तो ये कारण है। श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को अंगीकार किए बिना इन तीनों सुखों को मैं कभी आस्वादन नहीं कर सकता, कृष्ण ये सोच रहे थे इसलिए किया। समझ में आया, और आवश्यक था कि इसको हम एक साथ ही पढ़ाते तभी समझ में आएगी बात। राधा भाव अंग करी धरी तार वर्ण तीन सुख आस्वादित हब अवतीर्ण। श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार करके और उनके वर्ण को स्वीकार करके इन तीनों सुखों का आस्वादन करने के लिए चतन महाप्रभु अवतीर्ण हुए। अब तीन सुख क्या थे वो आप समझ गए होंगे, मैं रिपीट नहीं करूंगा। सर्व भाव कैला कृष्ण ऐ त निश्चय हेना काले आयला युग अवतार समय। जैसे इस प्रकार से हर प्रकार से भाव लेकर के भाई ये करना ही है, इस तरह से अवतरित होना ही है, कृष्ण सोच ही रहे थे, इतने में युगावतार होने का समय आ गया। सेई काली श्री अद्वैत करे न आराधना तहारा हुंकारे कैल कृष्ण आकर्षण। और उसी समय अद्वैताचार्य जी ने उनके लिए हुंकार किया, उनको अवतरित करने के लिए पुकारा, आपने सुना था ना बाह्य कारण में, और उन्हें कृष्ण का आकर्षण किया। पिता माता गुरुगण आगे अवतारी राधिकार भाव वर्ण अंगीकार करी नवद्वीप शचि गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु तहाते प्रकट हैला कृष्ण पूर्ण इंदु। पिता माता गुरुगण अपने आगे अवतरण करा करके और राधिका श्रीमती राधा रानी के भाव और वर्ण को अंगीकार करके नवद्वीप में शचि माता के गर्भ से जो शुद्ध दुग्ध के हिंदू के सिंधु के समान है, मतलब की सागर के समान है, उसमें भगवान कृष्ण पूर्ण इंदु यानी पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए, श्रीमन चतुर महाप्रभु के रूप में। एते करिलो षष्ठ श्लोके रा व्याख्यान श्री रूप गोसाई पाद पद्म करी ध्यान। इस प्रकार से मैंने छठे श्लोक का व्याख्यान किया और मैं श्री रूप गोस्वामी जी के चरण कमलों का ध्यान कर रहा हूँ। ए दुई श्लोकेर आमे ये करिल अर्थ श्री रूप गोसाई श्लोक प्रमाण समर्थ। ये जो तीनों श्लोकों का मैंने सॉरी दोनों श्लोकों का अर्थ किया उसमें श्री रूप गोस्वामी के श्लोक ही प्रमाण है। अपारम कस्यापि प्रणयजन अपारम कस्यापि प्रणयजन वृंदस्य कुतुकी रसस्तोमं हृत्वा मधुरम उपभोक्तुं कमपि यः रुचम स्वामावव्रे दितमिह तदीयां प्रकटयन् सदेवश्चैतन्याकृतिरतितराम्ना कृपयतुः। ये शिल रूप गोस्वामी द्वारा लिखित श्लोक है, यह है इनकी व्याख्या की पुष्टि कर रहा है, यह श्लोक बोल रहे हैं। देखिए ये सब बातें कठिन लग रही होंगी लेकिन कभी इस जिंदगी में दोबारा इच्छा होगी पढ़ने की तो समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, बस दो ही श्लोक हैं, घबराइए मत, अभी आप लोग जिंदा हैं। भगवान कृष्ण प्रेमिकाओं के समूह में से एक श्री राधा के असीम प्रेम के अमृत रस का आस्वादन करना चाहते थे, समझ रहा है, अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया। उन्होंने राधा के तेजोमय गौर वर्ण से अपने श्याम वर्ण को छिपाते हुए इस प्रेम का आस्वादन किया। वे चैतन्य महाप्रभु हम सबको अपनी कृपा प्रदान करें। तो ये श्लोक रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया श्लोक है और ये पुष्ट करता है चैतन्य महाप्रभु के आने के अंतरंग कारण को। मंगलाचरणम कृष्ण चैतन्य तत्व लक्षणम प्रयोजन चावतारे श्लोक षष्ठेर निरूपितम। इस प्रकार छह श्लोकों में मंगलाचरण श्री चैतन्य के तत्व का अनिवार्य लक्षण एवं उनके प्राकट्य के कारण को प्रस्तुत किया गया। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आ चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप रघुनाथ के चरणों के अमलों की आशा करके चैतन्य चरितामृत को कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। अरे कुछ लोग तो अभी भी बचे हुए हैं, मुझे लगा सब लोग आउट हो गए होंगे, तो खैर अभी भी आप लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग का सामर्थ्य हो तो दो मिनट में हम लोग पारायण कर लेते हैं।